चर्चा कर रहे थे संपूर्ण ब्रह्मचर्य की, उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज मैंने कहानी एक गांव में एक व्यक्ति था, अति क्रोधी, इतना क्रोधी कि गांव के हर व्यक्ति से लड़ते रहता था। उसका क्रोध जग प्रसिद्ध था। एक बार क्रोध में उसने अपनी पत्नी को भी कुएं में ढकेल दिया और वो मर गई। और जब उसका शव निकाला गया तब उसको पश्चाताप होने लगा कि मेरा क्रोध कितना खतरनाक है, कि मेरे क्रोध के वजह से मेरी पत्नी मर गई। तो वो पश्चाताप करने लगता है। उसी गांव में एक साधु आता है, तो साधु के पास जाता है, सन्यासी के पास, और कहता है कि मुझे कैसे भी करके इस क्रोध से मुक्ति चाहिए, आप मुझे इस क्रोध से मुक्ति दिला दो। अब उसका क्रोध का संस्कार बहुत लंबे समय का है, तो वो कहता है कि मुझे इस क्रोध से मुक्ति दिला दो। तो साधु कहता है, अच्छा तुम्हें सही में मुक्ति चाहिए क्रोध से, तो छोड़ दो इस गृहस्थ धर्म को और साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। तो वो क्रोधी व्यक्ति तुरंत सन्यासी बनने को तैयार हो जाता है। वो कहता है, मुझे अभी दीक्षा चाहिए और मैं अभी सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो साधु को भी आश्चर्य लगता है, मैंने इतने सारे साधक देखे पर तेरे जैसा साधक आज तक नहीं देखा, कि जो कि इतना तुरंत सन्यासी बनने को तैयार हो गया। वास्तव में उसका सन्यासी बनने का निर्णय भी उसके क्रोध का ही एक स्वरूप था। अब तक जो क्रोध वो बाहर के व्यक्तियों की तरफ था, अब वो अंदर की ओर हो गया है। तो कहता है, मुझे अभी सन्यासी बनना है, इसी वक्त तुरंत मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। तुरंत उसकी दीक्षा हो जाती है और तुरंत उसको सन्यास धारण कर लेता है। फिर अपने गुरु के साथ में घूमता है। अगर गुरु और उसके जो शिष्य थे, अगर शिष्य और गुरु एक बार खाना खाते थे दिन में, तो वो तीन दिन में एक बार खाता था। वो लोग अंदर सोते थे, वो बाहर सोता था खुले में। वो लोग छाव में रहते थे, वो धूप में रहता था, कड़कड़ाती धूप में। और ये सब करते हुए कुछ ही साल में वो इतना अपने गुरु से भी अधिक प्रसिद्ध हो गया, गुरु से भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। उसने अपने शरीर को बहुत टॉर्चर किया और जैसे जैसे उसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई, अपने शरीर के साथ वो और सख्त होते गया और ही टॉर्चर होते गया। अभी उसका जो पहला वाला क्रोध था और ये वाला स्वरूप, पहला जो क्रोध था उसमें उसकी निंदा होती थी, अभी वो जो क्रोध था उसका अपने ओर केंद्रित हो गया। तो उसकी लोग महिमा करने लगे, उसको तपस्वी मानने लगे, उसको साधु कहने लगे। जितनी उसकी प्रशंसा होती वो और अपने आप को प्रताड़ित करता और अपने आप को तपस्वी बनाता, जो कोई नहीं करता उसका शरीर एकदम ऐसे हो गया। फिर वो कहीं किसी गांव में गया, किसी बड़े गांव शहर में गया, वहां उसका कोई एक पुराना मित्र उससे मिलने आया, बहुत पुराना, और उसने देखते ही उसे पहचान तो लिया, परंतु क्योंकि अभी वो ऊंचे पद पर है, तो ऊंचे पद के व्यक्ति छोटे व्यक्तियों को न जाने, परंतु उनकी ये इच्छा रहती कि हमको सब जाने पर हम किसी को न जाने। और दूसरा एक कारण ये भी था कि उसने पहचाना नहीं उसको, क्योंकि अगर उसको पहचान लिए तो ये सबको पता चल जाता कि हम भी कभी ऐसे थे। अभी तो वो अपने शिखर पर पहुंचा हुआ है, वो जीवन उसने छोड़ दिया और अपने आप को उसने इतना प्रताड़ित किया कि वो अभी एक योगी, एक तपस्वी, एक साधु, एक महात्मा, और उसकी कीर्ति सब जगह फैलने लगी, बहुत उसकी प्रशंसा होने लगी, उसको महान योगी समझा जाने लगा। तो उसके मित्र को आश्चर्य लगा कि क्या ये वही व्यक्ति है जो इतना क्रोध करता था, मैं तो इसको बचपन से जानता हूँ, तो ये इसका क्रोध कैसे क्या ये हो गया। वो सोचता है, फिर भी वो सोचता है कि ऐसा नहीं कहना जाए। और दूसरी और एक बात होती है, उसके गुरु उसका नाम रखते हैं शांतिनाथ, मुनि शांतिनाथ। वो इतना क्रोधित होता है, इसके लिए उसका नाम शांतिनाथ रखा जाता है। तो वो तो तख्त पर बैठा है ऊपर, उसका मित्र उधर से आता है और पूछता है कि आपका नाम क्या है महाराज। तो एकदम उसे क्रोध आता है, क्या तुझे मुझे मेरा नाम पता नहीं, क्या अखबार नहीं पढ़ते तुम, क्या रेडियो नहीं सुनते, क्या लोगों के बीच में कभी तुमने सुना नहीं मैं कौन हूं। नहीं वो तो मैंने तो नहीं सुना, फिर भी मुझे बता दो। तो बोलते मेरा नाम है शांतिनाथ मुनि, मुनि शांतिनाथ। बोलते अच्छा बहुत अच्छी बात है। फिर इधर उधर की बातें चलती है थोड़ी देर, फिर वो वापस पूछते महाराज मैं तो भूल गया आपका नाम क्या है। तो बोलते अभी तो तुझे एक बार बताया मूर्ख। उसकी आंखें लाल हो जाती है कि तुझे अभी तो बताया मैंने कि मेरा नाम है शांतिनाथ मुनि शांतिनाथ, तुम कैसे भूल सकते हो मुझे। तो अंदर उसको पता चलता है हाँ आदमी तो वही लग रहा है। फिर और 2-3 मिनट यहाँ वहां की बातें चलती है। तो फिर वो उसके बाद में वापस पूछता है कि महाराज मैं वापस भूल गया आपका नाम बताएंगे वापस। तो बोलते हैं अभी तो वो दंडा ले लेता है। इतनी बार बताया उसके बाद में भी तो कैसे भूल सकता है, इतना उसको क्रोध आ जाता है। तो उसका मित्र कहता है कि बस यही जानने के लिए मैं 3 बार पूछ रहा था, यही बात जानने के लिए कि क्या यही व्यक्ति है या दूसरा है, बस कंफर्म हो गया कि यही है। तो लंबे समय के जो संस्कार है आत्मा के केवल दमन हो जाते हैं, जीवन परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरह काम वासना भी है, काम वासना आत्मा में बचपन से है, वो ज्ञान में आते हैं। काम महाशत्रु आदि मध्यंत दुख देता है, मुरलियों में सुनते हैं और वो कहीं ना कहीं दब जाता है। बाकी सब परिवर्तन हो जाता है, वेश परिवर्तन हो जाता है, बैच लग जाता है, दिनचर्या परिवर्तन हो जाती है, परंतु वासनाएं अपनी जगह पर रहती है। जब तक उनके ऊपर काम नहीं किया जाए, वर्क नहीं किया जाए, तब तक वो वासनाएं समाप्त नहीं होती। चाहे कितना भी कोई करो, वो क्रोध जैसे घूम रहा था उसके अंदर, वो पहले भी क्रोध था। उसके गुरु को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो कुछ कर रहा है ये क्रोध ही है, क्रोध का ही रूपांतरित स्वरूप था वो। वो क्रोध पहले बाहर था, ये जो क्रोध था अपने आप को पीड़ा देना, ये क्रोध अंदर का था, अपनी तरफ था, परंतु था एक ही चीज, वो समझ में नहीं आ रहा था किसी। और जब उसको अवसर मिला वो क्रोध बाहर निकला, क्योंकि क्रोध पर उसने काम नहीं किया। उसका जो क्रोध दिशा परिवर्तन नहीं की, क्रोध थी रूपांतरित नहीं, रूपांतरण नहीं किया। उसी तरह काम वासना जो है वो भी अंदर रहती है, जब तक उस पर काम नहीं किया जाए, उसको समझा नहीं जाए, उसको केवल दमन किया जाए, तो वो घूमती रहती है। ऊपर से चर्चा है सेवाओं की, ऊपर से चर्चा है तपस्या की, ज्ञान और योग की, पर अंतर में काम वासना घूमती रहती है। जब तक वो क्या है, उसका क्या स्वरूप है, ये जो शत्रु है ये शत्रु बन के नहीं आ रहा है सामने। रावण किस वेश में आ रहा है, साधु के वेश में आ रहा है। अगर रावण रावण के वेश में आता तो सीता कभी कभी उसको भिक्षा नहीं देती या सीता का हरण हो ही नहीं सकता था, परंतु रावण रावण के वेश में नहीं है, रावण साधु के वेश में। तो सबसे पहली चीज है ब्रह्मचर्य में, वो है दमन। एक है दमन का मार्ग, उसको दबा दो। आज तक द्वापर युग से अब तक सभी लोगों ने काम के, जो भी धर्म वाले हैं उन्होंने काम के विरोध में कहा है, काम की बहुत कड़ी निंदा की है, दिन रात कहा है काम महाशत्रु है, दिन रात कहा है आदि मध्य अंत दुख देता है, काम से ऐसा होता है काम से वो होता है, परंतु कोई उसका पालन नहीं कर पाया। फिर भी बहुत ही गिने चुने हैं जो कर पाए, क्यों? क्योंकि सबने दमन किया है उसका। उसका दमन अगर करो तो वो बाहर निकलता है किसी और विक्षिप्तता विक्षिप्त मार्ग। जैसे हमारी ओपीडी में एक सेंटर की बहन आई थी, उसको दूसरी बहन लेके आई। इस सेंटरों में ऐसा है कि वो जो छोटी बहन है उसको खाने की बड़ी मनाही है, हर चीज गिन गिन कर रखी है, ये बना है टोली बनेगी तो वो गिन के है, वो बना तो गिन के है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना ऐसे नहीं खाना। अब उसको खाने का बहुत शौक है, परंतु वहां रहते रहते उसने भी अपने आप को थोड़ा डाल लिया, संयमित कर लिया या जबरदस्ती दबा दिया कि भाई ऐसी ही ऐसा ही जीवन है। परंतु जब जब वो मधुबन आती है हर 3-3 घंटे में भूख लगती है उसको, और 3 दिन में इतना खाती रहती, इतना खाती रहती कि 4 दिन में लोगों के आस साथ में रहने वाली बहनों को हैरानी होती है, क्या हो रहा है इसको। दमन, कोई भी इच्छा वासना अगर दबा दी जाए तो उसका विक्षिप्त रूप प्रकट होता है, कुछ तो एक अजीब प्रकार का रूप प्रकट होता है जो समझ में नहीं आता है क्या है। काम या सेक्स ये ऐसी चीज है, जब तक इसको समझा नहीं जाए वो विक्षिप्त रूप से प्रकट होती। इसके लिए पिछली बार हमने क्लास में देखा, ब्रह्मचर्य अर्थात हर समय हर स्थिति में और हर स्थान पर सब प्रकार के मैथुन का त्याग, इसे ब्रह्मचर्य कहा गया। 8 प्रकार के मैथुन बताए हैं, हर प्रकार का मैथुन हर समय हर स्थिति में हर समय त्याग, उसे ही संपूर्ण ब्रह्मचारी कहा जाएगा। सबसे पहला उसमें हमने देखा था देखना, केवल देखना, कामुक दृष्टि से देखना, शरीर को देखना, अंगों को देखना, कामुक भाव से देखना, भोग इच्छा से देखना, क्योंकि शरीर को देखने मात्र से वीर्य स्थान भ्रष्ट होता है अगर उसमें कामुकता है तो। पहला देखना, दूसरा स्पर्श करना, स्पर्श से सुख की अनुभूति होती है, क्षणिक सुख पर अनुभूति होती है जरूर, परंतु वो सुख ऐसा है कि वो तुरंत ही दुख में परिवर्तन हो जाता है। तो दूसरा था देखना, तीसरा था केली, जिसको संस्कृत में हंसी मजाक हो या फिर खेलना कूदना सब कुछ आ जाएगा उसमें। वो चौथा हमने जो एक भूल गए थे वो था प्रशंसा, स्तुति करना, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत, इसमें ये गुण है। अभी ब्राह्मणों में देह की तो स्तुति करते नहीं है, परंतु गुणों की स्तुति करेंगे, सिर्फ संसार में देह की स्तुति करते हैं, दिखने में बहुत सुंदर है, और सारे कवि लोग जो है, लेखक लोग जो है, इन्होंने सबसे बड़ा समाज की पतन जो किया है इन्होंने किया है, उसका भ्रामक वर्णन किया है, उसमें है कुछ नहीं, अस्थि मज्जा मल रक्त बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन कहा जाता है जिसे, वो है, और उसका आंख ऐसे है, कपोल ऐसे है, होठ ऐसे है, चाल ऐसी है, यही सब लिखा जाता है, यही सब दिखाया जाता है फिल्मों में। संसार के पतन का एकमात्र कारण अगर देखा जाए आज तो वो है सिनेमा, क्योंकि उसी में दिखाया जाता है। चौदहवीं का चांद हो, आफताब हो, कौन सा चौदहवीं और कौन सा आफताब, फिल्मों में अश्लील साहित्य, अश्लील दृश्य, अश्लील गीत, अश्लील किताबें, अश्लील पुस्तकें, यही सब है। अखबारों के पृष्ठों पर इस तरह के नग्न और अर्धनग्न चित्र दिखाई देते हैं कि बेशर्मी भी शर्म जाए देखकर। युवक और युवती कॉलेज के क्या करने जाते हैं, उनका एंटरटेनमेंट क्या साधन क्या है, मनोरंजन का साधन क्या है, सिनेमा जाकर क्या देखते हैं, हीरो और हीरोइन क्या कर रहे हैं, वो देखने के बाद वही करने की प्रवृत्तियां जागृत होती है। किसी भी स्कूल कॉलेज की किताब में ब्रह्मचर्य का चैप्टर नहीं है, जबकि भारत के और विश्व के पतन का एकमात्र कारण है ब्रह्मचर्य का अभाव, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के शक्ति नहीं हो सकती, ऊर्जा नहीं हो सकती, ताकत नहीं आ सकती, व्यक्ति बलशाली नहीं हो सकता है, बुद्धि स्मृति स्मृति स्मरण शक्ति शक्तिशाली नहीं हो सकती, आरोग्य नहीं हो सकता है, अल्पायु है, आज विकारों के अधीन है सारे युवक, संसार के इतने सारे युवक देखो क्या कर रहे हैं, सब विकारों के अधीन है, वातावरण गंदा है, इतना खराब है कि सारे के सारे अधीन, उसका एकमात्र कारण है ये। तो दमन की फिलॉसफी ऐसी है कि अगर उसको दबा दिया जाए तो वो विक्षिप्त रूप से बाहर निकलता है, उसको अगर केवल दबा दिया जाए, उसको जब तक रूपांतरण नहीं करते हम तभी वो शक्ति बनेगा, नहीं तो जैसे ये बहन की कहानी बताई कि ये विक्षिप्तता उत्पन्न हो गई है। बहुत सारी हमारे हमने देखा है बहने और भाई, भाई और बहने, ये आते रहते हैं वो पीढ़ी में। उनको ऐसी तरह की कंप्लेंट्स है कि उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो एक वासना है जो दबी हुई है, वो शारीरिक व्याधियों के रूप में निकल रही है। पेशेंट रहता है ऐसे कि जैसे उसको लेके 10 लोग है, कुछ भी नहीं, सारा कुछ करो, सारी जांच नॉर्मल, और 2 घंटे में ठीक आएंगे। बेहोश उसको लेके 5 भाई, थोड़ी देर में ठीक। क्या है ये सब, क्यों हो रहा है ये? अच्छा, हम कहते हैं नाटक कर रहे, क्यों कर रहा है नाटक व्यक्ति? उसके भी पीछे कारण है। एक बहन बीच में एडमिट थी, उसको ये झटके, मिर्गी के झटके नहीं थे, सारा कुछ कर लिया, डिटेल हिस्ट्री के अंदर गए तो पता चला कि बचपन में सेक्सुअल हरासमेंट, सब तरफ से देखा जाए सारी बीमारियों का मूल कारण एक ही है, उसको दमन या वो उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। एक दूसरी एक बहन एडमिट थी जिसको हर रोज 15 से 20 बार उल्टियां होती थी 3 महीने से, और एकदम हेल्दी, सारी जांच करे नॉर्मल, इंडोस्कोपी नॉर्मल, सोनोग्राफी नॉर्मल। ये है क्या, आश्चर्य, क्यों हो रहा है ऐसा? अच्छा, उल्टी किसी ने देखी? किसी ने नहीं देखी करते हुए। वो सुबह जाओ तो कहती है कितनी बार हुई, रात को 12 बार, दिन में 5 8 बार, कहाँ है वो, किसने देखा ही नहीं, वो तो अंदर जाके करती। ढूंढा उसका कारण, उसके साथ बात किया, उसके साथ बैठे, उसकी गहराई में गए, उसके माताजी से पूछा, माताजी को भी पता नहीं क्यों होता है, हजार जगह जाके आए, परंतु बीमारी ऐसी कि ठीक ही नहीं होती है। अच्छा ठीक है, अभी हमको बताओ, जब हम कल आएंगे, एक ये दे दिया कंटेनर, इसमें वॉमिटिंग करो, तो फिर पता चले किया तो आई नहीं है ही नहीं। फिर उसको थोड़ा और गहराई में गए, उसके पता चला कि बचपन से ही उसके माता पिता का झगड़ा होता था, सेंटर पर वो छोड़कर सेंटर पे चली गई, वहां पर अलग प्रकार की प्रॉब्लम चल रही उसकी। ये सब में वो अब चाहती है कि सबका ध्यान मेरी तरफ जाए, सहानुभूति और स्नेह जो किसी ने दिया नहीं, इसको प्राप्त करने के लिए कुछ विधि। तो जहां दमन होता है वहां विक्षिप्तता उत्पन्न होती है, जहां काम विकार का दमन होगा वहां पर भी विक्षिप्तता ही उत्पन्न होगी। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि किसी एक पेशेंट का समर्पित डायग्नोसिस लिखा था, सप्रेस सेक्सुअल डिजायर, बाहर के डॉक्टर ने, ये जो कुछ हो रहा है उसका मुख्य कारण यहाँ है। तो आवश्यकता है इसको समझने की, आवश्यकता है ये क्या है, ये क्यों है। हम देख रहे हैं कि संसार में बहुत सारे विकर्म हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, अखबार खोलो तो एक ही चीज है उसमें, क्यों? अच्छा, 5 साल की बच्ची जिसके अंग भी अभी डेवलप विकसित नहीं हुए हैं, उसमें वासना का तो कुछ है ही नहीं, फिर भी क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा शरीर में, पुरुष के शरीर में जो वीर्य है वो जैसे ही शरीर से बाहर जाता है, ब्रेन से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसको एंडोर्फिन्स कहते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन, उससे तन बदन में एक सुखद अनुभूति होती है। अब उसको लगता है, इस पुरुष को लगता है ये स्त्री से मुझे सुख मिल रहा है, परंतु वो सुख उस स्त्री से नहीं है, वो सुख अपने ही जीवन शक्ति का स्खलन होने से जो सुख की अनुभूति हो रही है उसको लगता है उसके वजह से हो रहा है, पर हो रहा है बस वही। और ये जो सुख है क्षणिक सुख है, और ऐसा सुख है कुछ सेकेंड का है, परंतु अतींद्रिय सुख है, ऐसा सुख है कि उसको प्राप्त करने के बाद वही प्राप्ति की इच्छा होती है, बार 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 वही चाहिए। राजाओं की राजाई चली गई क्यों? इसी के कारण। बाप संसार में आया है क्यों? पतितों को पावन बनाने। खलास शब्द मुरलियों में आता है, आपने सुना होगा। खलास का अर्थ क्या है? बहुत गहरा, ये बहुत गहरा अर्थ है। खलास का एक दूसरा अर्थ है, बाबा कहते हैं यहां से गए और खलास, जिस व्यक्ति का वीर्यपात हुआ है उसके बाद की जो अवस्था है उसे हिंदी में शब्द है खलास, ये उसका ही करते हैं। वीर यही जीवन है, वीर यही शक्ति है, वीर यही ओज है और वीर यही तेज है। पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति में अंतर है। पाश्चात्य संस्कृति वेस्टर्न, वो कहता है कि ये करना चाहिए, काम विकार बहुत अच्छा है, ये शक्ति जैसे एक्सरसाइज करने से हम और शक्तिशाली बनते हैं, शक्ति जाने से और शक्ति आती है, वैसे वीर्य जाने से और हम शक्तिशाली बनते हैं। पर ऐसा नहीं है, खुद के अनुभव और हमारे देश के आचार्य और जितने महान योगी आत्मा है सबके अनुभव है कि वीर्य एक ऐसा तत्व है, जैसे पिछली बार बताया था 40 बूंद या 80 बूंदों से वो बना हुआ है, इतना उसमें शक्ति है। अगर वो शक्ति बाहर चली जाती है तो स्वतः ही स्थिति नीचे आ जाएगी, स्वतः ही वाणी का जो तेज है और ओज है और जो सामर्थ्य है और जो स्मरण शक्ति है कम हो जाएगी, शरीर में व्याधियां उत्पन्न होने लगेगी। जवान लोग फिर भी ये दर्द है वो दर्द है, टॉनिक या इंजेक्शन या माजून या जड़ी बूटियां खाने लगते हैं, ये सब कुछ मतलब एक प्रकार से जिन्होंने अपने वीर्य का बहुत 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 अपव्यय किया है, नष्ट किया है बचपन से, उनकी उनके जीवन में सारे रोग आने चालू हो जाते हैं। और जिन्होंने अखंड ब्रह्मचारी किसको कहते हैं, शास्त्र में लिखा है जिसने 12 साल तक अपने वीर्य की रक्षा की है वो है ब्रह्मचारी। तो वीर्य रक्षा, वीर्य संरक्षण ही ब्रह्मचर्य है। उसका मेन जो बैरामीटर है जिससे हम मापा जा सकता है पवित्रता, बाबा संपूर्ण पवित्रता की बात कर रहे हैं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संपूर्ण ब्रह्मचारी, बाबा तो ब्रह्माचारी की बात कर रहे हैं, उसके आगे की स्टेज है ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म में स्थित होने की ऐसी चर्या, ऐसी ऐसी तरह से जीवन की जिसमें ब्रह्म में हम स्थित हो सके। अभी जो वीर्य जो है उसकी एक है वो नीचे जाना चाहता है, अधोगामी होना चाहता है, पर योगी का वीर्य ऊर्ध्वगामी होता है। जैसे लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी नारायण को ऊर्ध्वरेता योगी कहा है, ऊर्ध्वरेता अर्थात जिस कि वो शक्ति कभी बाहर जाती ही नहीं है, वो शरीर में ही रहती है, क्योंकि उस वीर्य में इतनी शक्ति है कि वो नए जीव नए प्राणी का जन्म दे सकता है, उतनी उसमें शक्ति, एक बूंद में इतनी शक्ति है। अगर वो निरंतर बाहर जाती रही तो व्यक्ति में दुर्बलता आ जाती है, अधीनता आ जाती है, शक्ति का अनुभव नहीं होता है व्यक्ति को। इसके लिए संपूर्ण पवित्रता अर्थात संपूर्ण ब्रह्मचर्य, संपूर्ण ब्रह्मचर्य अर्थात 8 प्रकार के मैथुन का त्याग, देखना, स्पर्श करना, प्रशंसा करना, केली खेलना कूदना, ये 4। उसके बाद है गुह्य भाष्य, गुह्य भाष्य अर्थात गुप्त वार्तालाप, 5वें नंबर का है गुह्य भाष्य, गुप्त वार्तालाप, चाहे वो फोन से हो चाहे वो बैठ के हो। ब्रह्मा कुमारी आचार संहिता दादी प्रकाश मणि द्वारा प्रकाशित 2005 के नियम है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि छोटा सा है, बहुत कम जगह पर है, सेंटरों पर सब जगह है। उसमें भी लिखा है कोई ब्रह्मा कुमारी बहन और कोई ब्रह्मा कुमार भाई एक साथ अकेले में ना बैठे, क्यों, क्या कारण, क्या कारण हो सकता है, आपस में फंस जाने, ये तो बहुत ऊपर का स्थूल है, अंदर का बताओ, आकर्षण क्यों, क्या आकर्षण, आत्मा स्त्री का शरीर और पुरुष का शरीर अपोजिट पोल से, अपोजिट ध्रुव, ये जब सामने आते हैं तो इनमें आकर्षण उत्पन्न होता है, और सबसे ज्यादा आकर्षण किससे होता है, जैसे कोई विद्युत एनर्जी है सर्किट, जैन धर्म में बताते हैं यहाँ पे एक आत्मा है, अभी एक आत्मा में एक भी कामुक विचार अगर उत्पन्न हुआ तो वो कामुक विचार वातावरण में परमाणु के द्वारा फैलता है, वाइब्रेशंस प्रकंपन, ये स्त्री और ये पुरुष, इधर इधर उत्पन्न नहीं हुआ, इधर ही उत्पन्न हुआ है, दोनों इधर उत्पन्न नहीं हुआ, एक ही जगह उत्पन्न हुआ है, परंतु ये वाइब्रेशंस यहाँ से निकलकर यहाँ जाते हैं और इधर भी उत्पन्न होने की संभावना रहती है। अब यहाँ पर भी उत्पन्न हुआ, वहां पर भी उत्पन्न हुआ, यहाँ से वहां और यहाँ से फिर सर्किट कंप्लीट होता है,
गया।
इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीटेड। फिर दोनों में वही वासना उत्पन्न होती है। उसमें फिर माना चर्चा चल रही है सेवाओं की, चर्चा चल रही है ज्ञान और योग की, परंतु शरीर में ही आकर्षण है, उस देह में ही आकर्षण है। ये और ये दोनों इधर है, यहां से इधर गया, यहां से इधर गया, परमाणु प्रकंपन यहां से फैले, तो जो यहां भाव उत्पन्न हुआ वही भाव इधर उधर उत्पन्न हुआ। ये फर्स्ट स्टेप। फिर इसमें आगे आगे और आगे आगे बढ़ते जाते, बाबा जिसको कहते हैं अच्छा लगता है, ये बहन बहुत अच्छी है, इसमें गुण बहुत अच्छे हैं, ये गाती बहुत अच्छी है, ये जो आवाज गाने वाले जो है इनमें विशेष आकर्षण होता है। इसके लिए ब्रह्मचर्य के साधकों को कहा गया है, कोई स्त्री अगर बहुत अच्छा गाती है तो बिल्कुल कान बंद कर दो, क्योंकि बिना उसकी प्रशंसा किए रह नहीं सकते। अरे यार इसका आवाज तो बहुत सुंदर है, और स्त्रियों का स्वभाव ही शिथिल है, स्वभावता ही वो शिथिलता है उनमें, स्वभावता ही कोमलता है, स्वभावता ही आवाज में एक प्रकार का माधुर्य है जो कि पुरुषों के आवाज में नहीं है, उनमें सहन शक्ति भी बहुत ज्यादा है, तो वो सब प्रभावित करते हैं इनको, पुरुषों को, तो वो और आकर्षण बढ़ता है, इधर से उधर उधर से उधर सर्किट कंप्लीट होते जाता है और डीप होते जाता है, फिर वही अच्छे लगने लगता है, सारे आसपास का सत्य निरर्थक लगने लगता है, जिसमें आसक्ति है वही अच्छा लगने लगता है, उसी के साथ उसको दुख होता है तो हमको भी दुख होता है, उसमें उसको खुशी होती तो हमको भी खुशी होती है, उसको अगर कुछ बोलता है कोई डांटता है तो हमको दुख होता है, हम सोचते हैं कि हम इसको कैसे ऊपर करें, अब इसके लिए सब कुछ कैसे करें, ये सब आसक्ति के रूप है, आसक्ति, अच्छा लगना, लगाव, झुकाव, अटैचमेंट, एक एक करके सब कुछ डेवलप हो जाता है। स्पर्श, स्पर्श जो होता है उससे आसक्ति और बढ़ जाती है। तो गुह्य भाष्य, ये तो हो गया बैठना, एक दूसरा है फिर मैसेज, वो भी एक आसक्ति का बहुत डीप कारण है, यहां तक कि टीचर बहन और विद्यार्थियों के नियम बाबा ने लिखे हुए हैं, पर्सनल व्यवहार ना करें, पत्र व्यवहार, तब पत्रों की बात थी, अभी तो पत्र नहीं है, अभी व्हाट्सएप है, अभी फेसबुक है, अभी ईमेल है, अभी इंटरनेट चैटिंग है, सब कुछ है, तो ये सब एक तरफ से पतन की ओर ही ले जाने वाला है। एकांत ऐसी चीज है कि जिसमें वासनाएं निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, एक संयमी व्यक्ति इसको अपने आप को रोक सकता है, अन्यथा नहीं रोक सकता है, जिसको ज्ञान नहीं है इसका वो नहीं रोक सकता है, भले वो ब्रह्मा कुमार है, अपना जीवन समर्पित कर दिया है, सब कुछ कर दिया, परंतु इसका अगर ज्ञान नहीं कि इससे भी कुछ हो सकता है तो उसमें वो फंसेगा ही, क्योंकि देह ऐसी चीज है जो खींचता है। गुण, गुण तो और ज्यादा, गुणों से चालू होता है और फिर देह की तरफ जाता है, चालू तो गुणों से ही होता है, आकर्षित क्यों होता है, गुणों के, किसी के त्याग ही बहुत अच्छा है, किसी की तपस्या ही बहुत अच्छी है, कोई योगी बहुत अच्छा है, वहां से चालू है, चालू वहां से और अंत कहीं और है, बाबा ने इसके लिए कहा ना, अपवित्रता का हल्का नशा भी ना हो, अपवित्रता की टचिंग भी ना हो, संकल्प भी ना हो, क्यों कहा है, इधर ही देखो बस। तो वार्तालाप, उसके बाद होता है संकल्प, संकल्प करना, सोचना, सन्यासी के लिए वर्जित है सोचना भी, सोचेंगे तो संकल्प चालू हो जाएंगे, उसको देखना अलग अलग रीति से, उसकी उसकी चेष्टाओं को देखना, उसके भाव को देखना, भाव भंगिमा, वो कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बोलता है, इसके बारे में सोचना, स्मरण करना, या गृहस्थियों के लिए कहा गया है कि पूर्व के भोग प्रसंगों की स्मृति, योग करने नहीं देती आत्माओं को, जो भोग भोगा है उसकी स्मृति आनंदकारी स्मृति होती है, क्योंकि उसमें सुख तो उनको मिला ही है, ऐसे ही सुख नहीं होता तो सारा संसार उसके पीछे नहीं होता, उसमें बहुत सुख है और वो भी अतीन्द्रिय सुख है, जो वही सुख जो योग में है वो, पर वो इतना क्षणिक है कि आया और गया, आने से पहले ही समाप्त भी हो जाता है। बस वो शेर ने एक बार खून पी लिया कि उसको घास फूस फिर अच्छा नहीं लगता, वही चाहिए फिर, तो वो वैसा ही सुख है। तो उसकी जो स्मृति है उसको भी नष्ट करना है योग से। दबाएंगे तो वो निकलेगा, इसके लिए दमन हमको करना नहीं है, उसको समझ के उसको रूपांतरण करना है। जैसे कहा था ना पिछली बार, आत्मा निर्लिंग है, ना स्त्री है ना पुरुष है, सब आत्मा है। देखना, हम कभी यहां थे इसके पहले किसी स्त्री, कभी पुरुष, कभी स्त्री, इस तरह का भी अभ्यास है। तो एक है संकल्प करना, फिर है अध्यावसन। अध्यावसाय मतलब उसके निकट जाना। जैन में इतना सारे नियम है कि अगर कोई पुरुष यहाँ बैठा है तो 3 प्रहर या 1 घड़ी ऐसा कुछ है, उनके कुछ टाइम है, 6-3 घंटे तक अगर पुरुष बैठा, 3 घंटे तक वहां पर बैठना नहीं है जहां पर पुरुष बैठा, क्योंकि वाइब्रेशन है वहां पर, प्रकंपन है वहां। मैं एक बता रहा हूँ खाली, संसार में इसमें क्या क्या, बाबा ने ये सब नहीं कहा है, परंतु यहाँ तक दिखा है रामकृष्ण परमहंस के पास अगर कोई भिखारी व्यक्ति आ जाता था मिलने उनसे या कुछ देने के लिए, वो जाने के बाद फावड़ा लेके वो जमीन को खोदते थे और फेंक देते थे वहां उसके मार्गदर्शन से। बाहर के कोई कुछ लेके आता था तो खुद नहीं खाते थे, वो उसको बुलाते नरेंद्र को खिला दो, उसमें इतनी पावर है सब पचा लेगा, पर खुद नहीं खाते थे। हाँ विवेकानंद, उसको बुला उसको दे देते, पर बाहर का नहीं खाते थे, किसी के हाथ का, उसको पता है ये भिखारी है, नहीं खाते थे किसी का। ये सारी बातें तो द्वापर से चली आ रही है। ब्रह्मचर्य की महिमा तो हर शास्त्र ने गाई है, यहाँ तक गाया है कि किसी ने 4 वेद पढ़े और पूरे उसको कंठस्थ है, और दूसरी तरफ एक अंगूठाचार व्यक्ति पर केवल ब्रह्मचर्य धारण किया हुआ है, 8 प्रकार के मैथुन का त्याग किया हुआ है, तो उससे भी श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि एक धर्मोपनिषद है उसमें लिखा है कि किसी व्यक्ति ने 1 रात के लिए भी अगर ब्रह्मचर्य धारण करता है तो उसे 1000 यज्ञ से जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना प्राप्त होता है, यहाँ तक लिखा हुआ। यहाँ तक ये दिखाया है रामायण में, इंद्रजीत को किसने मारा, रावण का जो बेटा था लक्ष्मण ने, क्यों मार सका उसको, एक ऐसा चीज था, उसकी जो पत्नी थी इंद्रजीत की सुलोचना, वो इतनी पतिव्रता थी कि उसके पतिव्रता धर्म से ही वो जीवित था एक रीति से, उसने इंद्र को जीता था, इंद्रजीत नाम था, नाम था मेघनाथ का, इंद्र को जीतने वाला, इसके लिए उसका नाम था इंद्रजीत। उसे जब सुलोचना को ये पता चला कि लक्ष्मण ने उसे मार दिया, नहीं उसको पता चला मार दिया, बोले ये असंभव है, मार ही नहीं सकता, उसे तो केवल वही व्यक्ति मार सकता है जिसने, जो अखंड ब्रह्मचारी है। पर उसको जब पता चलता है कि उसे लक्ष्मण ने मारा तो बोलते ठीक है फिर यही एक व्यक्ति है जो उसे मार सकते हैं, और कोई नहीं मार सकता, क्योंकि लक्ष्मण तो इंद्रिय जीत है, वो इंद्रजीत है केवल, ये इंद्रिय जीत है अखंड। यहां तक कि दिखाया ना उसमें कि वो जो उसके आभूषण बोलते पहचानते हो, वो बोलते मैं तो केवल ये नूपुर मुझे नहीं पता, मैं पैर को क्या हो पहनते हैं वो पहचानता हूँ, वो हाँ कुछ है बस उतना ही पहचानता हूँ, ये सब मुझे मैंने कभी देखा ही नहीं, मतलब ये जो कुछ है वो सब ब्रह्मचर्य का प्रताप है, ब्रह्मचर्य का तेज है, ब्रह्मचर्य की शक्ति है। यहाँ तक कि एक डाकू, जो डाकू लोग थे भारत में अच्छे अच्छे, उनमें भी ब्रह्मचर्य और बहुत संयमी थे, उसी के वजह से वो इतने शक्तिशाली हो सके। हाँ पंचम सिंह, एक दूसरा एक भावनगर के डाकू की कहानी है, उसका नाम है जोगीदास खुमान, उस पर मूवी भी बनी है गुजराती में, खुमान, जोगीदास खुमान एक ऐसा डाकू है, उसके जीवन का एक प्रसंग दिखाया है कि वो एक रात में सोया हुआ है, उधर से आवाज आती है छम छम छम, दिखता है कौन है, एकदम अपना तमंचा बंदूक ले लेता है कि कोई शत्रु तो नहीं है, तो वहां से एक युवती 16 श्रृंगार किए हुए सजी धजी युवती सामने, तो बोलते कौन हो तुम, तो बोलते मेरे से इतना, वो बहुत ऐसी मीठी बात करती, मेरे से ऐसे बात ही मत करो तुम, मैं तो तुम्हारी बहुत वीरता के मैंने बहुत किस्से सुने हैं, तो बोलते वहीं खड़ी हो जाओ जो भी हो तो बोलते मुझे, मैंने तो तुम्हें अपने मन से पति मान लिया है, तो मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। तो वो उसको समझाता है कि भाई ऐसा नहीं है, मेरी तो गुरु परंपरा चालू है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता है, मैं तुमको मैं अपने साथ नहीं रखता, मुझे तो विकारों से जितना मैं चौकन्ना, मैं शत्रुओं से नहीं डरता पर ये विकारों से बहुत डरता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये अगर कर लिया तो सारी जो शक्ति है, जो ओज है, जो तेज है, लोग जो मुझसे थर्राते हैं, पूरा गांव मुझसे डरता है, वो सब खत्म हो जाएगा मेरा। इसके लिए मैं तो वो उसको समझाता है, बुझाता है, बोलता है तुम, वो कहती है कि कम से कम मुझे अपनी एक रात के लिए मुझे अपने पास रख लो बस, चलो धर्म पत्नी नहीं बनना चाहते, बस मैं कल सुबह चली जाऊंगी। वो उसको इतना समझाता है कि नहीं, तुम मेरी बहन हो, और उसको समझा बुझा कर भेज देता है। उसके बाद से दिखाया है डाकू जोगीदास कुमांग कभी भी अकेला नहीं सोया, उसने दो अंगरक्षक रख दिए दुश्मनों के, दुश्मनों के लिए नहीं, वो दुश्मनों से तो खुद अकेला निपट सकता है। कोई भी युवती, कोई भी स्त्री उसके पास नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो तेज है, मेरी जो शक्ति है, वो केवल ब्रह्मचर्य है, उसमें संयम था। तो वो इतना दुराचारी, वो मतलब एक प्रकृति से वो संयम की शक्ति से इतना शक्तिशाली हो सकता है। तो जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने तो व्रत ही ले रखा है ब्रह्मचर्य का, उनमें कितनी शक्ति आ जाएगी। और एक प्रसंग है उसके जीवन का, कि वो जा रहा है सुबह 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 एकदम सुबह, सूर्य उदय भी नहीं हुआ है, तो देखा एक युवती घूम रही है। उसको आश्चर्य हुआ कि ये युवती इतने सुबह और अकेली एकांत में। तो उसके पूछता है, ये लड़की कहाँ घूम रही हो? तो बोलते, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है तुम्हारे शील भंग का? तो वो क्या कहती है पता है, जिस गांव में हमारा भैया डाकू खुमांग जोगीदास है, वहां डर किस बात का? तो उसको भी बड़ा लगता है, बड़ा अपना नशा चढ़ जाता है, उसको भी एकदम नशा चढ़ जाता है कि मेरे रहते हुए देखो 50 गांव की बहू बेटियां सुरक्षित है। वो धर्म भ्राता बन जाता है सबका, क्योंकि वो स्त्रियों पर कभी आक्रमण नहीं करता है, और उसको संयम इतना रहता है, चरित्र रहता है उसका।
जिस गांव में बहन माना ने, भाई माना, वो छोड़ देता था गांव।
हाँ, गांव को छोड़ देता था। कहानियां, मूवीज बनी है उसके ऊपर, ब्लैक एंड व्हाइट, मैंने देखी नहीं पर है।
गांव छोड़ देता मतलब
लुटेगा नहीं वो, इतना उसने संयम दिखाया। तो भारत में जो भी ऐसे डाकू जो दिखाए, इस तरह के डाकू, उनने संयम दिखाया, क्योंकि उनको पता है हमको किसी बाहर के शत्रुओं से बिल्कुल डर नहीं है, राजाओं के सिपाहियों से डर नहीं है उनको, उनको डर है बस ये विकार से, क्योंकि इसमें एक बार गया कि सारी शक्ति कम हो जाती है। नेपोलियन का जो पतन हुआ, वो क्यों क्यों हार गया, वो वाटरलू के युद्ध में, बस उसी रात में जो कुछ हुआ उसके बाद में निर्णय नहीं कर पाती आत्मा, शक्ति इतनी कम हो जाती है वीर्यपात के बाद कि एकाग्रता कम हो जाती है, समझ में नहीं आता है, निर्णय नहीं कर पाता है शक्ति। हिटलर का पतन क्यों हुआ, वही कारण। नेपोलियन का पतन क्यों हुआ, वही कारण। महाभारत में अभिमन्यु की हार क्यों हुई, उसी रात। सब कुछ एक ही कारण है, यहाँ तक पृथ्वीराज चौहान के लिए भी दिखाते हैं, संयोगिता संयोगता जो भी है, ये सारों का कारण एक ही है। व्यक्ति उसमें जाने के बाद उसकी जो शक्ति है वो कम हो जाती है, इतना तो सबने अनुभव किया है। इसके लिए प्रिजर्वेशन ऑफ सिमेन इज नोन एज ब्रह्मचर्य, वीर्य की रक्षा, वीर्य का संरक्षण संरक्षण ही ब्रह्मचर्य, और यही लक्ष्य है हम सबका। माना वो उससे मापदंड है, उसमें भी फिर जैसे मैंने बताया, तो उसमें दो प्रकार, एक है स्वप्न दोष और एक है हस्तमय। मानसिक रीति से ये आदतों के बारे में तो सबको पता है, दारू, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इससे छूटना मुश्किल है, पर उससे भी कड़ी एक आदत है, वो है हस्तमैथुन, मास्टरबेशन, वैंकिंग, कि जिसमें मानसिक कामुक संकल्प करके आत्मा में ये जो संकल्प आते ही वीर्यपात होता है, पर इच्छा से करना, क्योंकि वो करते समय बहुत सुख का अनुभव होता है, और ये एक ऐसी हैबिट है, ऐसी आदत है कि जो जिसको ये लगती है इससे छूटना ही मुश्किल है। केवल स्त्री को देखने मात्र से वीर्यपात हो जाता है कहीं कहीं, इतनी ऐसी आदत है कि इसको बहुत मुश्किल है इससे छूटना। कोई बड़ा दृढ़ संकल्प कर ले, यहां तक कि ओपीडी में ऐसे कितने पेशेंट आते हैं कुमार, जो कहते हैं नाइटफॉल कैसे छूटे, कोई दवाई दो, दवाई है ही नहीं उसके लिए। साइंस तो कहता है प्राकृतिक है, साइंस तो कहता है होना ही चाहिए, साइंस तो कहता है बहुत अच्छा है, साइंस तो कहता है नेचुरल है। क्या सतयुग में होता था? नहीं। यहां तक कि बाबा ने कहा है मासिक धर्म और स्वप्न दोष ये विकार है, विकार के ही अंश है, जो कि सतयुग त्रेता में ये सब नहीं है, नारायण को ये सब नहीं है। वहां पर संतानोपत्ति योग बल से है, भोग बल से नहीं है। द्वापर में कहाँ चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, मुश्किल है बताना, उसका कुछ डिटेल बाबा ने बताया नहीं इसके लिए, पर चालू वहीं से हुआ, पहले नहीं था। तो ये जो है जिसको संसार अप्राकृतिक कह रहा है आज पाश्चात्य, वो उसको अगर अंदर ही रोक दिया जाए तो वो शक्ति बन जाती है। जैसे तेल का उदाहरण देते हैं, इधर आग है जल रहा है, इधर तेल है, अगर ये इस बाती में एक छेद है तो तेल नीचे जाता जाएगा। अभी तेल ही जा रहा है उसमें से और अग्नि बन रहा है, तो वो जो शक्ति बन रहा है वो तेल ही है। तो शरीर में भी सबसे सारभूत तत्व जो है वो है वीर्य, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है वीर्य, रस जो है, सार जो है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है, सबसे ज्यादा विटामिन प्रोटीन और जो कुछ है सब कुछ उसमें है। उसमें एक लेसिथिन नाम का कंपोनेंट होता है, वो लेसिथिन ऐसा है कि उससे स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। तो जो व्यक्ति बार बार उसका निकलते रहता है उसकी स्मरण शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, याद नहीं रहता है कुछ भी चीज। चुस्त और सुस्त, आज बाबा ने तो कहा ना, ये जो चुस्त वाले बच्चे हैं वो वीर्यवान बच्चे हैं। चुस्त अर्थात वीर्यवान, सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव इनएक्टिव, एक्टिव एंड पैसिव इंग्लिश में कहे तो। ये जो चुस्ती कहां से आती है, बल कहां से आता है, शारीरिक बल कहां से आता है, मानसिक बल, बौद्धिक बल, नैतिक बल, ये सबका आधार ब्रह्मचर्य। आज भारत का जो पतन है उसका एकमात्र कारण ये, किसी भी किताब में इसके बारे में वर्णन नहीं। क्यों? क्योंकि लोग, जैसे आप सुबह कह रहे थे ना कि लोग अगर कोई ब्रह्मचारी हो तो उसको तो एकदम ऐसे छोटा समझते हैं, अरे छोड़ो ये कुछ काम का नहीं है। अगर कोई ब्रह्मचारी गुरुकुल है ना, यहाँ पर गुरुकुल के विद्यार्थी और एक कॉन्वेंट का विद्यार्थी रख दिया जाए, कॉन्वेंट का पूरा टाई लगा कर और गुरुकुल का धोती और वो चोटी पहन के, तो किसको प्रिफर करते लोग, अरे ये बहुत अच्छा है, ये तो अंग्रेजी बहुत आती है इसको, ऐसे ही समझते हैं ना। ये होशियार है, होशियार कौन है, जिसमें वीर्य की शक्ति है, जिसमें ओज है, जीवन शक्ति जहाँ पर संचय हो रहा है वो शक्तिशाली है। ये तो विकारों के अधीन है, ये तो लैपटॉप और मोबाइल और गेम्स और इसके अधीन है। सब कुछ होता है, शरीर की बीमारियां कितनी सारी, हजारों बीमारियां गिनाई जा सकती है। आंखें ऐसी हो जाना, आंखें अंदर धस जाना, ये गाल अंदर धस जाना, शक्तिहीनता का अनुभव होना, ये सब उसके वजह से होता है। वो करने के बाद अभी ये जैसा एक होता है कि इसको धीरे धीरे जैसे संकल्प हमारे ऊपर ऊपर उठने लगते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन सीधा संकल्प के साथ है। श्रेष्ठ संकल्प है तो कभी नहीं होगा, थोड़े संकल्प नीचे गए तो तुरंत हो जाएगा, थोड़ा बाहर के वातावरण में चले जाओ तुरंत हो जाएगा। जैसे ऐसे ही हुआ ना वो व्यक्ति के जैसा, उसने क्रोध दबा के रखा, समय मिला वो निकल गया बाहर, हमने काम को दबा के रखा, सामने लेके चले जाओ और रख दो एक पोस्टर, नग्न अर्धनग्न, तो तुरंत वीर्यपात हो जाएगा। वह तब नहीं होगा, रात को होगा, क्योंकि वो जो देखा जाता है वो अंदर चला जाता है, उसकी प्रिम छप जाता है, अंकित हो जाता है वो स्मृति पटल पर। और जो चीज यहाँ बताई जाती है ना, इसको नहीं देखो, इसको नहीं करो, ये नहीं करनी चाहिए, वही चीज करने की इच्छा होती है, वही चीज देखने की इच्छा होती है, उसमें क्या है, और उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। जो जो कुछ कुछ साध्वी है, एक साधु के साथ में एक साध्वी बैठी हुई है, हवा का झोंका है, साधु की जो चादर है, वो बातें चल रही है आत्मा परमात्मा की, बातें चल रही है आत्मा और परमात्मा की, आसमान की बातें चल रही है। अभी हवा का झोंका आया, साधु की जो शॉल थी वो उड़कर उसको लगी, वो बोले मैं तो पतित बन गई, ये तो पुरुष की शॉल है। अरे तुम बात कर रही हो आत्मा और परमात्मा की, आत्मा निर्लिंग है, ये शॉल में कहां से लिंग उत्पन्न हुआ, ये पुरुष की शॉल और स्त्री की शॉल, ये कौन सी विक्षिप्तता है ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य व्यक्ति एक फ्लेक्सिबल व्यक्ति होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियों से भागेगा दूर, यहाँ रूपांतरण की बात है। जो साधु सारा संसार छोड़कर उधर जंगल में चला जाता है, वहां सब कुछ नया उत्पन्न करता है मन में, वो ब्रह्मचर्य नहीं चाहिए हमको। दबाने वाला ब्रह्मचर्य नहीं चाहिए, भागने वाला नहीं चाहिए ब्रह्मचर्य, उससे गुस्से नहीं होगा, वो संभव नहीं है। उससे तो और विक्षिप्तता उत्पन्न होगी। विदेश में एक अमेरिका में एक अलग प्रकार के सन्यासी है जिनको फ्लैगिस्ट कहते हैं। फ्लैगिस्ट मतलब उन्होंने क्या नियम बना के रखा, जैसे काम वासना उत्पन्न होगी स्वयं को कोड़ों से मारने, काम वासना उत्पन्न हुई 10 कोड़े मारो खुद को। अभी धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि कोड़े मारे 10, ठीक है, फिर वो और कोड़े मारने की इच्छा होने लगी, और जितना कोड़े मारने लगे और काम वासना उत्पन्न होने लगी, और फिर और आनंद होने लगा, तो अपने आप को बहुत मारने लगे, क्योंकि वो मारने के बाद ही फिर काम वासना उत्पन्न होने लगी। ये कैसा कुचक्र है, उसमें फंस गए, वो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, पागल जैसा हो जाता है व्यक्ति, एक तो विक्षिप्त इनसेन पागल। तो इसको दवा, ये एक ऐसी शक्ति है कि इसी शक्ति को ओज में परिवर्तन करना है। ओज तेज जिसको कहते हैं, वीर्य, जो कुंडलिनी शक्ति का जागरण है, वो अगर वो शक्ति को प्रिजर्व कर लिया तो वही कहते हैं कि एक सुषुम्ना एक नाड़ी उत्पन्न रहती है, उससे वो शक्ति ऊपर जाती है आज्ञा चक्र में, यहाँ सहस्त्रार चक्र, ये उधर की टर्मिनोलॉजी है सारी, यहाँ उसका ये होता है, तो व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है, तेज आ जाता है। वो पिछली बार बताया था 3 मार्ग है, मन प्राण और वीर्य। एक तो मन को संयमित करो तो आप ही वीर्य और प्राण संयमित हो जाएंगे, बाबा ने ये मार्ग बताया हमको, जब चाहो तब चाहो, मन मुझ में लगा, मन मना भव मध्याजी भक्तम आम नमस् करो, अपना मन मुझ में लगाए तो वीर्य आप ही वश में आ जाएगा, कुछ कंट्रोल सहज, बाबा ने कहा ना तुम्हारी पवित्रता सहज है, बाबा कहते हैं, बाबा ने तुमको स्मृति दिलाई है, क्या स्मृति दिलाई है, कुछ कुछ ऐसी बातें कह दी उसने कि जिससे हमारी पवित्रता सहज हो गई। सबसे पहले कि तुम्हारा स्वरूप ही पवित्र है, एकदम उसने स्मृति दिला दी कि तुम अनादि स्वरूप, तुम्हारा आत्मा है। दूसरी एक पावरफुल स्मृति उसने दिलाने कि तुम ही देवता थे, ये किसी ने नहीं, सन्यासियों को ये पता ही नहीं कि वो देवता थे। तो ये हमारा एक स्वरूप है कि बाबा ने ये बता दिया कि मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वो तुम हो, ये हमको अपनी स्मृति दिला दी बाबा ने। तो ये इसके लिए पवित्रता थोड़ी हमको ज्यादा खींचती है। संसार वालों को के पास क्या है, ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा अनादि पवित्र है, आत्मा वो तो कहते हैं आत्मा में ही लेच्छेप होता है, इसके लिए ये ज्ञान उधर नहीं है। दूसरा उनको ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा ही हम ही देवता थे, वो तो खाली देवताओं की पूजा करते, उनके पास ये ज्ञान नहीं है कि जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है वो हम है, ये हमारा समान है, भक्तों को जिनके द्वारा अनुभव हो रहे हैं वो हमारा है, हमारे द्वारा हो रहा है, ये ऊंची स्मृतियां हमको बाबा ने दी है, इसके लिए हमारे लिए पवित्रता सहज है। बाकी संसार तो आज भी इसको अप्राकृतिक कहता है, अस्वाभाविक कहता है, ये स्वभाव नहीं है, इसको दमन मत करो, उसमें कूद जाओ वासनाओं में, ऐसा कहता है वो। साइंस भी वही कहता है, मेडिकल साइंस में हमारी किसी भी किताब में ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैरिसन कहीं नहीं है, कोई भी ब्रह्मचर्य का टॉपिक है कि मैनस कहीं नहीं है। वो तो कहता है मास्टरबेशन इज वेरी गुड, यू शुड डू इट एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके करो। वो तो कहता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेक्स, सेक्स से होने वाले फायदे 1 2 3 4 5, कांदा लहसुन प्याज से होने वाले फायदे, ये कामोत्तेजक हम कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कामोत्तेजक है। उसने बोला नहीं, इसके तो हार्ट अच्छा रहता है, ये फायदे ये फायदे वो फायदे, ये सब गिना रहा है उधर, ये एक तरफ ऐसा हो रहा है। इसके लिए समझ में नहीं आता बहुत बार क्या सत्य है, पर स्व अनुभव कहता है कि ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ है, उसके सिवा वाणी में ओज तेज शक्ति। ब्रह्मचर्य वीर्यपात करने से कोई साइंटिस्ट बन सकता है, पर विवेकानंद नहीं बन सकता। साइंटिस्ट भले बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा आविष्कारक बन जाएगा, कुछ तो खोज कर लेगा, ऐसी खोज की जो कोई नहीं कर सके, परंतु वो अलग बात है, अभी वो एक दूसरा टॉपिक है, परंतु ये करने से ऊपर कोई फिलोसोफर नहीं बन सकता, कोई योगी नहीं बन सकता, कोई संत नहीं बन सकता, कोई महात्मा नहीं बन सकता। अभी दूसरी एक बात जो इन्होंने कही, अभी ये भी जो लोग थे वो एक रीति से तपस्वी और ब्रह्मचारी थे। अगर वो इसका थॉमस एल्वा एडिसन की अगर स्टोरी लिया जाए तो उसको अगर उसके मन में यौन आकर्षण होता, उसके मन में काम लिप्सा होती, काम कामोन्माद होता तो क्या वो इतने सारे आविष्कार कर पाता? असंभव। जितने भी महान लोग हुए हैं, योगी, तपस्वी, उदासी, भारत के क्रिश्चियन रोमन कैथोलिक सेंट्स, चाहे वो तिब्बत के लामा ले लो या बौद्ध के लामा ले लो, बोधिसत्व ले लो, ये सब ने ब्रह्मचर्य का ही पालन किया है। चाहे वो ये महावीर के जो भी तीर्थंकर ले लो, दूसरे दूसरे धर्म के हम जा रहे हैं अभी, क्रिश्चियनिटी के ले लो, अलग अलग भाई फेद के ले लो, जो भी है सब ने ब्रह्मचर्य का ही पालन किया है कहीं ना कहीं। हाँ, रघुनाथ अपना स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन देखो, उसने तो कितना बड़ा क्या दिखाया है उसके जीवन में, कैसा उसने ये किया। हाँ, मतलब ये इतना शक्ति उसमें कहाँ से आई? और ब्रह्मचारी के उसके माँ बाप तो उसकी शादी करने में लगे होते, कैसे झूठ बोला, कैसे वो क्या क्या किया उसने, बहुत बड़ी स्टोरी है उसकी। तो सब कुछ ब्रह्मचर्य के लिए, तो चाहे योगा ये हो, भारतीय तो है ही ये सारे, पर विदेश के भी बहुत सारे रोमन कैथोलिक सेंट्स जो थे वो सब भी ब्रह्मचर्य को ही पालन करें। क्राइस्ट खुद ही ब्रह्मचारी है, क्या बात कर रहे हो आप वो खुद ही शाकाहारी भी है,
योगी था बोला।
वो खुद तपस्वी है, वो तो कुछ किताबें लिखी हुई है, द अननोन लाइफ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट ने भारत में आके कितने साल तपस्या की, क्योंकि क्राइस्ट के बीच के जीवन का वर्णन ही नहीं है कहीं। 14 साल की उम्र में गायब हो गया, सीधा 40 साल की उम्र में आया, बीच में कहाँ था?
क्राइस्ट को जब कहते हैं कश्मीर में थे।
हाँ, कश्मीर में भी बताया है, उसने शरीर भी वहां छोड़ा, उसने वेदों का अध्ययन किया, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। वो तपस्वी था एक रीति से, बिना तपस्या के व्यक्ति शक्तिशाली हो ही नहीं सकता। योग करने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है, और शक्ति है वीर्य।
वीर्य स्पोर्ट्स पर्सन है, ओलंपिक,
हाँ,
उनके लिए वर्जित होता है,
वर्जित होता है।
जितने स्पेस में जाने वाले साइंटिस्ट हैं
उनके लिए भी वर्जित होता है, 1 महीना, 2 महीना, उनकी शक्तियाँ कम हो जाती है।
ये क्रिकेट खेलने भी जाते हैं, उनको साथ में ही ले जाने।
हाँ,
को
और ये जो है ना, ये एक चाल भी थी एक्चुअली। एक मैं एक दूसरा बता रहा हूँ, दूसरा पॉइंट है ये कि एक राज्य दूसरे राज्य पर हमला करना चाहता है तो क्या करते थे, पहले से ये राज्य बहुत सारी गणिकाओं को अंदर भेज देते थे, उनके जो सेनापति है उसके पास भेज देते थे, क्योंकि उनके पास जाते ही उनका पतन हो जाता है। क्योंकि जो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है उसको आप बल से नहीं हरा सकते, उसको हराने की एक ही विधि है, छल से, काम वासना से उसको हरा दो, कोई रमणी कामनी को उसके पास भेज दो, तो स्वतः ही पतन हो जाता है उसका, शक्ति ही कम हो जाती है, पूरा निकल ही जाता है सब कुछ, बल ही निकल जाता है उसका, फिर उसको परास्त करना बहुत आसान है। ये तो एक प्रकार से चाल थी, और आजकल भी कुछ तो CID और ये सब जो है ना विदेश में, हाँ यही सब करते है, उसके अधीन हो जाते हैं।
मिल्खा सिंह के जीवन का नहीं होता, यही बताते ओलंपिक में हारा था ना, बाद में उसने खुद ने त्याग किया उसका, बाद में।
जब तक आप, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो स्टडी हो, कोई भी स्टडी, चाहे आविष्कार करना हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोगों से मुक्ति प्राप्त करनी है, कुछ भी ले लो, स्मरण शक्ति अगर बढ़ानी है, कुछ भी ले लो, सबका आधार ब्रह्मचर्य ही है। अच्छा ये तो मैंने नहीं सुना, शिवाजी महाराज तो ना ना ना, शिवाजी महाराज तो वो आदर्श है इस चीज के लिए, ना उसका नहीं, ना यहाँ तक कि संभाजी तो उससे भी अधिक पराक्रमी है, पर उसके लिए जीवन में भी कुछ कुछ लोग कलंक लगाते, पर वो सब मिथ्या है, ऐसा नहीं है, वो भी आदर्श पुरुष है, वो भी आदर्श पुरुष है।
घटना है ना,
उसको कोई वो सामने रहता है तो उसको वापस भेज देता है,
बोला था मेरी बहन है, माँ
बहन है,
ये तो अगर इतना सुंदर मेरी माँ होती तो मैं कितना सुंदर।
यहाँ तक विवेकानंद के लिए भी कहा है, जैसे उसने भाषण दिया और नीचे उतरा, बहुत सारी स्त्री आ गई, एक स्त्री तो बोले मुझे आपसे शादी करनी है, बोलते क्यों शादी करनी है मुझसे, तो बोलते मुझे आपके जैसा बिल्कुल तेजस्वी और ऐसा वक्ता पुरुष चाहिए, तो बोलते अच्छा ऐसा है, तो बोलते मुझे ही बना लो ना, उसमें कितना टाइम लगेगा, शादी कब करेंगे, बच्चा कब होगा, वो वक्ता कब बनेगा, इतना तेजस्वी, उसके लिए मैं प्रस्तुत हूँ। वाणी में भी जो पावर है वो भी आने का एकमात्र कारण है ब्रह्मचर्य। जो आत्मा जितनी प्योर है, जो आत्मा जितनी पवित्र है, उसमें उतनी ही संयम शक्ति है। संयम जहां पर है वहां सब कुछ है। संयम तो संसार के लोग भी मानते हैं संयमित व्यक्तियों को, जो ये भोगी विलासी पाश्चात्य लोग हैं वो भी, अगर उनके बीच में अगर कोई संयमी हो तो उसको बड़ा मानते हैं, कोई भी हो, संयम एक ऐसी चीज है कि हर रीति से, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, हर इसमें उसको श्रेष्ठ माना गया है। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात संपूर्ण ब्रह्मचर्य कुमारों के लिए, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संपूर्ण संयम। यहां तक कि जैन धर्म में ऐसे बहुत सारे नियम है, उसमें तो यहां तक कहा गया कि ऐसे चीजें कि जिससे स्त्रियों से और अधिक परिचय हो वो सब नहीं करो, जिससे मैत्री बढ़े, फ्रेंडशिप बढ़े, ये जो भी मार्ग है वो सबसे वर्ज्य है वो सब चीज। हाँ वो तो उसने तो यहाँ तक कहा है कि उसमें 8 गुना ये होता है और वो होता है, वो सब है, परंतु उसमें संयम भी उतना ही होता है। वो आग लगा देती और शांत बैठ जाती है वो वाली चीज है उधर। अभी देखो दो दो व्यक्ति इतिहास में सबसे महान है, एक चंद्रगुप्त मौर्य जो सबसे पहला सम्राट है भारत का और अंतिम सम्राट है पृथ्वीराज चौहान, दोनों को देखा जाए वो बहुत पहले हुआ, बुद्ध के भी पहले, बुद्ध के आसपास, और ये एकदम अंत 1200 में 1293। अभी चंद्रगुप्त मौर्य महान बना, पृथ्वीराज चौहान भी महान है, दोनों भी बहुत शूरवीर है, परंतु फिर भी पृथ्वीराज चौहान का पतन हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का पतन नहीं। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के पास में चाणक्य है उसको रोकने के लिए, इधर चाणक्य है ही नहीं,
वो एंड तक महान ही रहा।
हाँ वो एंड तक महान ही नहीं, उसके पतन की कोई कहानी ही नहीं
है,
कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसको तो बचपन से ही उसको थोड़ा थोड़ा विष देके उसको शक्तिशाली बना के रखता था, इसलिए कोई विष उसको विषाक्त नहीं कर सकता था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की महानता उसकी वजह से। और अगर देखा जाए पृथ्वीराज चौहान का अंत अर्थात एक साम्राज्य का अंत है, पृथ्वीराज चौहान का अंत अर्थात हिंदू का अंतिम शासक है वो, उसके बाद में ही मोहम्मद गौरी ने और सारा कितने वर्षों तक 700 वर्षों तक मुसलमानों का राज्य भारत में चला, वो एक ही कारण है, उसका पतन अर्थात ये सब हो गया। मतलब कितनी सूक्ष्म बात है, कौन ना नहीं वो अंतिम शासक है, अंतिम हिंदू शासक अर्थात पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद में मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी की भी मृत्यु होगी, उसने बिन कासिम उसका जो वो सेवक था उसको रख दिया, उसके बाद में वो रजिया सुल्तान, उसके बाद में वो तुगलक, उसके बाद में फिर बाबर, बाबर हुमायूं अकबर औरंगजेब, ये सारा फिर इनका चालू हुआ, मोहम्मद शाह, मोहम्मद बहादुर शाह जफर और फिर अंग्रेज। मतलब ये जो 700 साल जो भारत गुलामी में दासत्व का कारण बना काम विकार,
बहादुर शाह जफर उसके कारण ही गया।
हाँ बहादुर शाह जफर भी देखो उसी के कारण,
हिंदू परिषद वाले बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान के बाद ऐसा कोई राजा मिला तो नरेंद्र मोदी।
पृथ्वीराज चौहान जैसा राजा कोई था ही नहीं, क्योंकि वो इतना शूरवीर, इतना शक्तिशाली, इतना इतना श्रेष्ठ, उसमें हर गुण है, पर उसको प्रेम था ना उसके संयोगिता से,
लास्ट में हो गया।
हाँ मतलब जो भी है, पर उसके जैसा शासक ही कोई है, वो तो कहूंगा कि वो चंद्रगुप्त मौर्य से भी अधिक शक्तिशाली है, और उसका दृष्टिकोण भी बहुत बड़ा है, उदार है, वो स्मरण शक्ति बहुत शक्तिशाली है, माफ करने का गुण है उसमें, वो राजाओं की क्वालिटीज है सारी उसमें, वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो यहीं पे कहीं होगी अपने पास की कोई दादी है, कोई ऐसे है। मतलब बहुत ही महान आत्मा है, उसके जैसे पूरा शासक ही नहीं है कोई, पूरा इतिहास में कोई शासक नहीं है, सारे उसके सामने छोटे पड़ते हैं, इतना महान है। शब्द बेदी से लेके सब कुछ, यहाँ तक तो ये तो हम कह रहे हैं, परंतु कुछ अनदर स्कूल ऑफ थॉट वो कहती है कि ये सब उसके ऊपर जो काम का कलंक लगाया ना वो भी गलत है एक्चुअली, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, वो कहते हैं उसको तो वो तो छल से उसको पकड़ा गया और वो आखिरी तक शूरवीर ही था, क्योंकि उसकी और उसकी तो शादी हुई नहीं ना संयोगिता, खाली उसने भगा के लेके गया संयोग स्वयंवर से, पर शादी नहीं हुई उनकी,
उसके कहने पर वो ज्यादा उसका इंटरेस्ट खुद का इतना नहीं था उसके पर, उसका ज्यादा था,
वैसे दोनों का प्यार तो था ही प्रेम विवाह ये सारा चीजें है, बहुत सारी चीजें उसमें। अभी इतिहास में हम तो केवल अपने काम का जितना है उतना समझ ले, साहित्य क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इसका बहुत गहरा असर है। और सबसे मुख्य है सिनेमा, जो भी सो कॉल्ड लास्ट टाइम बताया था ना रिलीजियस मूवीज भी जो है उसमें भी ऐसे ऐसे दृश्य है जो काम वासना को ही
उसमें
उसी में सब कुछ रहता है, क्योंकि वो जो कुछ दिखा रहे हैं उनका स्पिरिचुअल कैलिबर कुछ भी नहीं है, वो तो खाली पैसे के लिए कर रहे, तो वो सब पतन के ही मार्ग है। इसके लिए कुमार जीवन अर्थात शक्तिशाली अगर बनना है, आज देखो पहला तारीख है आज, तो सबसे पहले बाबा से संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा करना और रोज इस प्रतिज्ञा को दोहराना। एक दिन से नहीं होगा ये, रोज रोज अमृत वेले बाबा से संपूर्ण पवित्र भाव का तिलक या वरदान ले लेना। संपूर्ण पवित्र भाव वीर्यवान भाव, वीर्य का संरक्षण ही पवित्रता है कुमारों के लिए, क्योंकि इसका जाना अर्थात ही अपवित्रता। और अगर वो फिर भी हो रहा है तो हमको करना है कि क्यों हो रहा है, कहां मेरा ध्यान जा रहा है इसके वजह से ये हो रहा है। फिर भी अगर स्वप्न दोष हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जरूर दिन भर में कुछ ना कुछ हम देख रहे हैं सुन रहे हैं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट की क्यों ना, उसमें ही कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है। खाने पीने का तो बहुत गहरा संबंध है इसमें, ये जितनी भी कामोत्तेजक, हमने तो लसन प्याज और ये नॉनवेज छोड़ दिया वो ठीक है, पर वही पर्याप्त नहीं है। जो कि साधु संन्यासी योगी जंगलों में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे फिर भी छूट नहीं पाए, तो हमारी क्या बात, जो कि तीन बार भोजन और चार बार टोली खाने वाले, चाय चाय भी कामोत्तेजक है, सब कुछ, ये सारी जो चीजें है ना, मतलब अपने आप को संयमित करना है। मतलब है तो ठीक बाबा की याद में खाओ, नहीं है तो भी ठीक, और उसमें फिर गरिष्ठ भोजन, बहुत ज्यादा तेल, बहुत ज्यादा नमक, बहुत ज्यादा मसाले, ये सारे काम विकार को, क्योंकि अगर कोई बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी अमृत वेला रेगुलर है, ज्ञान चिंतन है, सब कुछ, उसके बाद में भी अगर हो रहा है वीर्य पात, तो फिर ढूंढना है मैं क्या करूं ये, क्योंकि हमारा तो वो स्थूल चीजें सारी छूट गई, यहाँ आ गए, श्रेष्ठ संघ है, श्रेष्ठ वातावरण, संसार में तो गलत गंदा वातावरण है, यहाँ श्रेष्ठ संघ है, श्रेष्ठ वातावरण, उसके बाद में भी हो रहा है तो जरूर फिर एक ही बचता है, भोजन। सब कुछ अगर हम कर रहे हैं उसके बाद में भी अगर हो रहा है तो भोजन, भोजन ही है, एक तो भोजन और दूसरा हम क्या देख रहे हैं, वो टीवी, वीडियो, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज पेपर, चैनल्स, ये सारा कुछ है, उसको ढूंढो कहाँ है, अपने आप को चेक करो। बाबा ने कहा ना, चेकिंग की भी चेकिंग करो, क्यों हो रहा है। संसार इसको अप्राकृतिक कहता है, पर बाबा ने कहा पवित्रता हमारी प्राकृतिक है, मतलब ये होना ही नहीं चाहिए, संपूर्ण स्टॉपेज, बस वही ब्रह्मचर्य, ये अगर कर दिया तो ही ब्रह्मचर्य। इसके लिए इसी रीति से अपने आप को चेक करना है, ये एक जैसा कि बैरोमीटर है, मापदंड है, ये हो रहा है इसका मतलब पवित्रता की कमी है, सीधा कनेक्शन है, मतलब संकल्प में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ जा रहा है, सुनने में जा रहा है, देखने में जा रहा है, बोलने में, वार्तालाप तो सब छूट गया हमसे, तो देखना और सुनना इसमें तो है ही। कितना टाइम हुआ, हो गया, सिनेमा, फिर पहनना, कपड़ों का भी इसमें बहुत डीप कनेक्शन है, देखना, मतलब कमेंट करना कपड़ों के ऊपर, ये कपड़े बहुत अच्छे, मुझे एक बात बतानी तो नहीं चाहिए पर बताता हूँ, एक बहन ने SMS दिखाया कि किसी, यहाँ ही की बात है, मतलब मधुबन की, मधुबन अर्थात सब कुछ सारा कि एक दूसरे भाई ने SMS भेजा कि बहुत मस्त दिख रहे हो, उसने मुझे पूछा मैं क्या करूँ, समर्पित भाई, तो अपनी दृष्टि को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि घूर घूर कर देखना, वस्त्रों को देखना, कैसे देखते रहना, कोई कईयों की आदत है, बैठे हैं वहां पर और देख रहे कौन आ रहा है जा रहा है, तो बहनों को पता चलता है, उसमें देखा होगा कुछ बहने खाली नीचे देख के चलती, क्यों, क्योंकि उनको पता है हम इधर उधर नहीं देखना है, इसके लिए जानबूझ के वो नीचे देख के चलती, सही, मतलब उनको पता है ये हो रहा है, इसके लिए उनको असुरक्षा का अनुभव होता है, इधर भी कहां, जिसके जहां पे आने के लिए नियमावली है, मधुबन में आने के नियम 10-15 नियम है सेंटरों पर, कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, ये वो स्थान है, इसको हम भूले ना, हम किस स्थान पर बैठे हैं, मुड़ मुड़ कर देखना, ये तो संसार के लिए बताया जाता है ब्रह्मचर्य की किताबों में, कि जा रहे और मुड़ मुड़ के 10 बार देख रहे कौन था कैसा था, कलर क्या है, रंग क्या है, क्या पहना है, क्या किया है, तो ये यहां पर भी है, ये तब होता है जब ज्ञान का श्रेष्ठ चिंतन नहीं है, ये तब होता है क्योंकि बुद्धि जाएगी कहाँ, इतना शक्तिशाली भोजन खा रहे हैं कुछ कहीं, तो कहाँ जाएगी वो और ज्ञान योग का अभाव है, योग नहीं कर रहे, खाली ज्ञान ही कर रहे हैं, वो भी नहीं चाहिए। ज्ञान है खाली बहुत, तो योग नहीं है फिर भी होगा। ये योग बहुत है, कई लोग 2 बजे से आके बैठ रहे हैं और ज्ञान में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। क्या कर रहे हैं पता नहीं, क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं पर ज्ञान में इतनी रुचि नहीं है, ज्ञान की चर्चा में रुचि नहीं है, खाली वो सुबह की एक मुरली बस उतना सुन लिया, वही उनका सब है बस। योग योग मुझे तो आश्चर्य, करते क्या है योग में, सही में मुझे आश्चर्य होता। कभी पूछू कि क्या प्रयोग करते हो आप जो दिन रात योग करते रहते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो बैठे ही रहते हैं योग में और ज्ञान बिल्कुल, ज्ञान चर्चा में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ बस वही 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 दमन दमन वाली चीज है इधर। जो पिछली बार बताया था ना, एक साधु 14 साल की उम्र में संन्यास ले लिया, 60 साल का हो गया, बोलते सारी उम्र लोगों को सुनाया काम महाशत्रु है, काम नर्क का द्वार है, फिल्में तो बिल्कुल देखनी नहीं चाहिए, फिर भी जिनको सुनाता हूँ जा के फिल्में देखते, ऐसा है क्या फिल्मों में देखू तो जरा ये अपने अंदर की ऐसी दबा के रखा है कि कोई तो बताए मुझे क्या है, अभी पूछू किसे, पूछू किसे तो अपमान, पीछे पूछू अगर किससे पूछता हो तो लोगों की हमारे प्रति भावनाएं कम हो जाएगी, सम्मान कम हो जाएगा, फिर भी उसने पूछा एक व्यक्ति से क्या करूं और वहां जाता हूं तो दूसरा आदमी को पूछा कि आप मुझे ले चलो, बोलते मैं अगर ले चलो तो लोग मुझे मारेंगे कि देखो ये साधु को लेके आया, मतलब इतना धर्म संकट में पड़ गया कि ये फिल्मों में आखिर है क्या, कि मैं मेरे बताने के बावजूद भी उधर जाते हो, जरूर कुछ तो है उधर। तो किसी ने कहा कि भाई चलो एक काम करते, गांव के बाहर एक दूसरा एक ये टॉकीज, ये है टॉकीज, वहां लेके चलते, पर वहां इंग्लिश मूवी है, आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आया, बोले नहीं समझेगा, देखूंगा तो सही क्या है, समझ में नहीं आने दो है क्या कुछ तो है उसमें जबर, कुछ तो बात है। वैसी एक दूसरी एक और एक ऐसी छोटी सी कहानी है, एक होटल रहता है, वहां पे एक व्यक्ति आता है, बोलते मुझे कमरा दे दो, बोलते एक ही कमरा खाली है, पर वो हमने सोच लिया किसी को ही नहीं देंगे, क्योंकि उस कमरे के नीचे एक दूसरा व्यक्ति रहता है, वो इतना झगड़ा करता है, इतना झगड़ा करता है, अगर थोड़ा भी आपने आवाज कर दिया ऊपर तो झगड़ने आ जाएगा आपके पास। तो बोलते देखो अभी मेरा ऐसा है कि मैं तो रात को 2 बजे लौटूंगा, दिन भर काम करके, सारा दिन भर काम, और सुबह सुबह जल्दी निकल जाऊंगा, तो रात में तो झगड़ने का सवाल ही नहीं है, तो मुझे दे दो आप। वो भी सोचते हाँ ये तो बात तो बराबर है, ये रात को 2 बजे आएगा, सुबह जल्दी निकल जाएगा, और वो तो नीचे वाला तो सो जाता है। तो बोलते पर फिर भी ध्यान रखना, वो बस झगड़े का चांस ही ढूंढ रहा है, अवसर ढूंढ रहा है। तो वो रात में फिर व्यक्ति होटल ले लेता है, रात को आता है 2 बजे, 2 बजे आता है, इतना थका रहता है कि जूता निकालता है ऐसे डालता है तो धड़ाम से आवाज आती, फिर उसको ध्यान में आता है नीचे तो वो व्यक्ति है, इसके लिए वो दूसरा जो जूता है एकदम आराम से निकालता है और रख देता है। अभी नीचे वाला जो व्यक्ति है 1 घंटे के बाद आता है बोलते दूसरे जूते का क्या हुआ बोलते मैंने जब तुम आए और तुमने जूता गिराया मैं ये तो समझ गया कि तुम आ चुके हो, पर ये बात मेरे मन को मतलब इतना सता रही है कि दूसरे जूते का हुआ क्या। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि भाई छोड़ो उसे, मुझे क्या लेना देना है, मुझे तो सोना है, वो आया वो जूता निकाले, नहीं निकाले चलो वैसे ही सोया होगा। फिर मैंने अपने आप को और समझाया तो वो बस जूता ही जूता घूम रहा है मेरे सामने, ये जूते का हुआ क्या। उसने अपने आप को दबाने की बहुत समझाया, 1 घंटे तक समझाया कि भाई जूता का क्या करूं मैं, क्या करना है, मेरा जूता थोड़ी है, उसका जूता है, वो निकाले ना निकाले, पर ये जो दबा के रखा था ये अब मेरे से दबा नहीं गया, इसके लिए मैं आके पूछा आखिर ये जूते का हुआ क्या,
आवाज क्यों नहीं आई,
आवाज आई क्यों नहीं उसी तरह ये जो काम का जूता है ना, सेक्स का जूता, ये घूमते रहता है माइंड में तो ये ऐसा घूमता रहता है कि उसको कभी ना कभी तो निकलेगा बाहर, इसके लिए उसका स्टडी करना। इसके लिए मैं कहूंगा जगदीश भाई की जो किताब है ब्रह्मचर्य, उसका अध्ययन शुरू करो। बाकी मुरलियों का अध्ययन बहुत कर लिया, मुरलियां बहुत पढ़ ली, मुरलियों में क्या है वो सब का जो सार है वो ब्रह्मचर्य, उसको अगर पहले हमने समझ लिया, उसका डिटेल अध्ययन किया ना, ये सारा क्षण में हमारे कब्जे में आ जाएगा, पूरा अधिकार हो जाएगा। समर्थ जिन्होंने संपूर्ण पवित्रता को अपने अंदर धारण किया है, परसों का वरदान वही समर्थ सम्राट है। हमने आज मुरली डिस्कस नहीं की कोई भी। समर्थ सम्राट कौन है? जिन्होंने संपूर्ण पवित्रता को अपने अंदर धारण किया है। तो संपूर्ण पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा, वाचा और कर्मणा को भी छोड़ दो, केवल मनसा। हमारा एक भी संकल्प कामुक ना हो, हमारे एक भी संकल्प में देह की आकर्षण ना हो, एक भी संकल्प में उसका जो प्रमाण ऐसा दिखा दे अगर कोई रूपवती स्त्री सामने है उसको देखने की इच्छा ना हो। अगर ऐसा हो जाए तो समझ लो कि ब्रह्मचर्य में हम स्थित है। सीधा सीधा संसार का ब्रह्मचर्य की बात कर रहा हूँ, बाबा तो ब्रह्माचार्य की बात करते हैं, वो उसके आगे की स्टेज है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। हम अभी केवल ब्रह्मचर्य की बात कर रहे, चाहे नग्न अर्धनग्न कोई भी स्त्री हो, हमको स्त्री के देह को क्या है उसके अंदर का देखना, अस्थि मल मूत्र इसी का चिंतन करते रहना, ये है उसमें कहाँ है उसका सौंदर्य, जब वो बीमार पड़ती है तो, जब वो शैया पर लेटी हुई है कहाँ है उसका सौंदर्य, कहाँ है उसका सौंदर्य जब वो बूढ़ी हो जाती है, कहाँ है उसका सौंदर्य जब वो मर जाती है उसके देह को कुत्ता घसीटते हुए ले जा रहा है, कहाँ है उसका सौंदर्य जब वो क्रोधित है, कहाँ है उसका सौंदर्य जब वो षड्यंत्र कर रही है। हाँ ये सब गंदगी है, परंतु वो रूप आकर्षित करता है, इतना आकर्षित करता है। ये कोई अभी की बात नहीं है, द्वापर से अब तक की बात है। रानी पद्मावती की कहानी ले लो या अलाउद्दीन सबकी ले लो, क्या है आकर्षण किसका है? रूप का ही तो है। रूप और रंग और लावण्य और सौंदर्य, कौन सा सौंदर्य? ये भ्रामक है सौंदर्य, जो कि कितनी सारी कहानियां दिखाई है। एक राजा है, अपनी रानी से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना स्नेह करता है, वो भी करता है, वो भी करती है, और उसको एक दिन पता चला इसका तो वो नौकर के साथ में चल रहा है, और वो नौकर तो इतना गंदा है, उसका एक एक अंग गंदा है, वो मेरे जैसा सुंदर भी नहीं है, वो तो एकदम काला है। उसको, उसकी पत्नी को उसमें क्या सौंदर्य दिख रहा है जो मुझे छोड़कर वो उसके पास जा रही है? ये कहानी है राजा हेमचूर, वो उसको वैराग आ जाता है, राज्य ही छोड़ के चला जाता है, सन्यासी बन जाता है सीधा। उसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये इतना मैंने इसको प्यार किया मेरी पत्नी को, और ये उसके साथ, मतलब ये जो आकर्षण है ये केवल रूप ऊपर भ्रामक, ये भ्रम है, एक भ्रांति है, इट्स संकल्पना है, कल्पना मात्र है, ये है नहीं, अस्तित्व नहीं है इसका सत्य। इट्स अ स्किन डीप ब्यूटी, वो चमड़ी को निकाल दो कहाँ है सौंदर्य, आभूषणों को निकाल दो, वस्त्रों को निकाल दो कहाँ है सौंदर्य, फिर भी सिनेमा उसको बताएंगे बहुत सुंदर है, गीत ऐसे बनाएंगे कि बहुत ही सुंदर है, कविता ऐसी लिखेंगे कि उसके काल है, उसके हाथ ऐसी है और चाल ऐसी है कि वो मतलब पुरुष पढ़ते ही उत्तेजित हो जाता है, कामोत्तेजना उत्पन्न होती है, सेक्सुअल डिजायर्स अराइज होती है माइंड में। तो वो सभी चीजें जिससे सेक्सुअलिटी अराइज होती है उन सभी का त्याग अर्थात ब्रह्मचर्य, मनसा वाचा कर्मणा हर रीति से। संसार में अनेकों वल्गर जोक्स के वेबसाइट से हजारों हजारों वीडियोस अवेलेबल है, बस क्लिक करने की देरी है, क्लिक करो और सामने सब कुछ, हजारों मूवीज बनी हुई है, ब्लू फिल्म जिसको कहते हैं, पोर्नोग्राफी जिसको कहते हैं, ये सब क्या है? उसी का विक्षिप्त रूप है। शांतिवन की बात, 4-5 साल पहले सारे शांतिवन का ये बंद हो चुका है इंटरनेट, मतलब वो अपने अपने डिपार्टमेंट के वही वही वेबसाइट उतने ही खुलते हैं, क्यों? कारण क्या है? मुझे निर्वर भाई साहब ने बताया था, जब निकाला गया बिल इतना ज्यादा कि इतना बिल आया, एक बार इतना बिल आया कुछ सालों पहले कि भाई इतना बिल आया कैसे, पता चला तो ये सारा निकाला, वेबसाइट कौन कौन से देख रहे। अभी देखो सारे दिन भर सेवा करने के बाद आत्मा थक जाती है, योग तपस्या रिलैक्सेशन, वो देखते देखते उधर बुद्धि चली जाती है और फिर जिज्ञासा उत्पन्न होती है क्या है, और देखने की इच्छा होती है, और देखने की इच्छा होती है, और वो इच्छा ऐसी है, ये जो भोग है, ये इसमें एक ऐसी चीज है, ऐसा आकर्षण है कि वो जितना देखो और देखने की इच्छा होती है, जितना भोगो और भोगने की इच्छा होती है, उसमें एक विलक्षण सा आकर्षण है, समझ में नहीं आता, अज्ञात आकर्षण है एक। हाँ मतलब ऐसा है कि देखो वो एक मनोरंजन का जैसे साधक बन जाता है पोर्नोग्राफी। हाँ तो ये सब बंद कर दिया फिर, पर ये तो दमन हो गया, फिर भी बंद करना उसका ये नहीं है, ये बंद किया तो कुछ, ये भी ये इधर इधर ही सब कुछ है, इधर क्लिक करने की देरी है, बस यूट्यूब इसमें ही चालू हो जाता है। वो बीके कहो, ये बीके कहे, वो है पर हो रहा है, क्योंकि अंदर में वासनाएं समाई हुई है। अभी इसको कैसे, वो तो सब कुछ कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, सारा दिन भर सेवाएं कर रहे हैं, और रात में वासनाएं जागृत होती है। उनको भी पता ये गलत है, रोक नहीं पाते, क्योंकि शरीर डिमांड करता है। फिर उसकी वो ऐसी है जैसे स्मोकिंग करने वाला, वो पता नहीं है उसको कि नहीं करना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए। अभी हमारे ओपीडी में गिड़गिड़ाते हैं उसके माँ बाप कि उसको छुड़ाओ, कैसे भी करके उसकी कैसे छुड़ाओ, दवाइयों से छूटने वाला है क्या, संकल्प चाहिए उसके लिए। हाँ, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, शरीर डिमांड करता है। फिर ये जो है ना मास्टरबेशन और ये जो पोर्नोग्राफी और ये सब है, ये तो खींचता है फिर आदमी। अभी रिसेंटली सबको पता है कि नहीं पता नहीं, एक केस हुआ शांतिवन में, पता है, होमोसेक्सुअलिटी, पुलिस आई, पुरुष पुरुष समर्पित भाई एक सेवाधारी भाई के साथ। अभी ये क्यों हुआ, एक है पुलिस आई, वो सब कर दिया, हो गया, पर क्यों हुआ, विक्षिप्तता है ये, क्योंकि दमन हुआ है काम का। इधर आ गए, इससे बात नहीं करो, उससे बात नहीं करो, यहाँ सारे नियम मर्यादाओं का पालन करो, सुबह सेवा करो, ये करो, अभी दबा दबा दिया है काम भी घर। अभी स्त्री है नहीं, अभी किसके साथ अवेलेबल जो होगा उसके साथ, व्हाट आर द अवेलेबल सोर्सेस। ये एकदम शर्मनाक, दर्दनाक, कलंक लगाने वाली बात है कि हम इस संसार की सबसे महान आत्मा है,
पवित्र।
जहां पर ज्ञान योग छूटेगा वहां ये सब होगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। जहां पर ज्ञान योग छूटा ये सब दूसरा, ये देखो इतनी हमारे में शक्ति है खाने की, जो ब्रह्मा भोजन की, वो जाएगी कहां, एक ही मार्ग है बस, इधर ही जाती है और कहीं नहीं जाएंगे। कहीं घूमना फिरना क्रोध करना ये तो बहुत ही चिल्लर और छोटी बात है। भोजन जो आ रहा है राजू भाई के दो तीन क्लासेस में भी आया है, कोई आ रहा है 1 करोड़ देके जा रहा है, 2 नंबर का यज्ञ में डाल के जा रहा है, उसी का भोजन बन रहा है और उसी का हम खा रहे। बनाने वाले जो है वो बाप की याद में बना रहे, देखो जरा जाके। वो माता जो है वो अपने बेटे को याद कर रही है, किसको याद कर रही है, किसको याद कर रही है, पता नहीं। भोजन पैसा कहाँ से आ रहा है, याद में किसकी बनाए जा रहे हैं, कैसा, और हम किसकी याद में खा रहे हैं, हम स्वाद को देख के खा रहे हैं, खाने के लिए जी रहे, जीने के लिए खा रहे हैं, बहुत सारी बातें। तो शक्तिशाली शक्ति आएगी कहाँ,
ब्राह्मण बाबा के बच्चे उनका दाना दाना लगता था, अभी ये बोलता है मैं सारा चीन साल का देता हूँ,
वही वही वही। तो इसमें हमारी जो विधि है, अपने को अपनी पवित्रता कायम रखनी, क्योंकि ये कम हुआ कि बस विक्षिप्तता आना चालू। जितने लोग यज्ञ से गए हैं उसका एक ही कारण है, अपवित्रता का आकर्षण बस, बाकी ऊपर से दिखा इसका झगड़ा हुआ, वो झगड़ा, वो सब कुछ नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगा, वो सब कुछ नहीं है, उसने उसको अपमान कर दिया, उसको गेट आउट बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, इसके लिए छोड़ के चले जा रहे, ये कुछ कारण नहीं है, कारण एक ही है काम। क्योंकि इसको समझना ही जीवन है, बिना इसको समझे आगे नहीं बढ़ सकते। 20 साल भी हो फिर वो क्रोध वाले व्यक्ति जैसे रहेगा 20 साल, पर आदमी तो वही है, पहचान लिया ना उसके दोस्त ने, आदमी तो वही है, यही है वो आदमी मुनि शांतिनाथ हमारा भी कोई दोस्त मिल जाए और हम उसको दिखाएं कि भाई देखो हम ब्रह्मा कुमार बन गए, हमारा ये बैच और हमारे ये कपड़े और हमारी दिनचर्या ऐसी, वो तुरंत पहचान लेगा, कुछ ऐसी बात कह देगा कि हमारा भी निकल आएगा बाहर और बोलेगा ये ही देखने के लिए बस तुमको दिखा था, ये तो बदल लेने से क्या होता है। और महाराष्ट्र में एक तुकाराम महाराज वो कहते हैं अगर ये भगवे वस्त्र पहन के अगर कोई सन्यासी बनता तो ये कुत्ता भी उसको भगवे वस्त्र पहना उसको भी योगी सन्यासी और तपस्वी कहा जाएगा। कपड़े बदलने से नहीं होता है कुछ, वो एक उसके अंदर का एक अंतरित भाग है, परंतु मेन है संकल्प। तो बाबा ने हमको संकल्प की पवित्रता बताई, एक भी संकल्प देह की तरफ आकर्षित करने होने वाला नहीं, वो जो जो ट्रिगर्स है, क्योंकि वासनाएं तो अंदर है निहित जन्म जन्म की, उसको खाली ट्रिगर की आवश्यकता है, ट्रिगर मिल गया बाहर निकल जाएगी पूरी, एक मूवी देख लो बस सारा निकल जाएगा, ज्ञान योग रहेगा एक तरफ। अब बाबा ने कौन सी मूवी देखी, उसमें क्या दिखाया होगा ब्लैक एंड व्हाइट जिसपे वो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, उसमें वो जो स्त्री होगी ना वो भी पुरुष ही होगी, स्त्री का हार्ट पार्ट करने वाली, अभी वो देखकर भी वैराग्य पूरा चट हो गया कि लक्ष्मी तो आजकल की जो मूवी है वो देख के क्या हो जाएगा उसके साथ ऐसा हो गया और आज हम क्या क्या खाने वाले, तेल मसाले चोल टोली और ये सब भोग
कितना खेत है
कितनी सारी बातें बोल दी ना उसने। अभी हमारा सब सुख सुविधा है, यज्ञ संपन्न है, सारी सुख सुविधा है, एक मांगो तो 10 आ जाता है, सब कुछ है, पर जितनी सुख सुविधा और भोग विलास है उतना ही वैराग्य कम हो जाता है। वैराग कम हो जाता है, वैराग कम हो जाता है, देह का आकर्षण बढ़ जाता है, नियम मर्यादा है। अभी इतने जो सेंटरों के जो नियम मर्यादा है, कितने लोग है नीचे, आप देखो, मुझे कोई बता रहा था बाबा से मिल भी रहा है, बाहर जाके स्मोकिंग कर रहा है। हाँ तो कहाँ है वो, किस कितना परिचय है बाप का, बहने ऐसे ही लेके आ गई। बस
आगे
देखना, इसके लिए पहले क्या क्या नियम थे, 1 साल 2 साल ऐसे वैसे, अभी क्या है कुछ, बस आ रहे ऐसे बस, मतलब अभी क्वांटिटी है, बहुत सारी क्वांटिटी, वो नियम मर्यादा है पढ़ो, उसमें इतनी सारी बातें हैं तो धक्के लगते हैं। हाँ सर, सर धक्का लगता है वो पढ़ने का, और उसको कहा है कि वो ऐसे ग्रुप में संगठन में पढ़ना चाहिए, बीच बीच में रिवाइज करना चाहिए, दो दो महीने, बहुत सारा है, कुमारों के लिए है, कुमारियों के लिए, पर अभी कहाँ है, सब डाइल्यूटेड है, सब डाइल्यूटेड है, उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये क्रक्स है, इसको ही छोड़ दिया ना तो वो आप कितना भी कुछ करो सब निरर्थक है।
पढ़ाई के लिए कहा धर्मशास्त्र में, गुरुकुल में भी कहते हैं, पढ़ाई और ब्रह्मचर्य में रहकर ही पढ़ाई पढ़ सकते हैं,
बिना ब्रह्मचर्य के पढ़ाई नहीं, 25 साल फर्स्ट 25 ईयर्स पहले ब्रह्मचार्य आश्रम में, फिर उसके बाद में गृहस्थ में जाओ, जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाए, वो अलग बात है, पर दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, क्योंकि उसके बाद ही आप, क्योंकि गृहस्थ आश्रम भी पहले कितना प्योर था, महान माँ बाप ही महान संतान को जन्म देते हैं, और आजकल के माँ बाप कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब भोग विलास चाहिए पर संतति नहीं चाहिए, उसके लिए शादी और ये सब, ये तो उससे तो और अधोपतन हो रहा है भारत का सब रीति से।
अभी कोई
महान आत्मा जन्म नहीं
हो रहा,
पहले अत्यंत
आत्माएं जन्म,
अभी कहाँ कैसे जन्म हो रहे हैं, वो तो जो महान आत्मा है, जैसे इवन जानवरों में इतना कामुकता नहीं है जितनी पुरुषों में कामुकता है, अगर कोई दूसरे ग्रह का व्यक्ति इधर आ जाए, कोई दूसरे ग्रह का, और वो देखे कि ये देखो मानव, ऊपर से तो बड़ी बड़ी बातें करता है, समाज सुधार की बातें करता है, ये बात करता है, वो बात करता है, और अंदर तो देखो बस काम ही काम भरा हुआ है, दूसरा कुछ है ही नहीं अंदर, उसकी कोई चर्चा ही नहीं, अंदर काम भी कर रहे हैं, हाँ वही ना, एक्स्ट्रा मैरिटल ये जो कुछ है ना, ये सब है, अरे ससुर ससुर की दृष्टि विचलित होती है बहू को देखकर, ये और क्या कहे, जिसके लिए पुत्र वधु है, हाँ फिर मैं कैसी कैसी ये दुर्दशा है, इस सारे दुर्दशा का एक ही कारण है, संयम की कमी, ब्रह्मचर्य की कमी, ज्ञान की कमी, वातावरण पूरा विकारी है, विकारी वासना है, काम वासना है, इन हवाओं में काम वासना है, सारी मूवीज में वही दिखा रहे, सारे सीरियल्स में वही दिखा रहे, सारे गीतों में वही दिखा रहे, सारी उपनिषद, सारे जो बड़े शहर में जो ऐसी किताबें है सामने फुटपाथ पर, सारी विकारी किताबें, मेडिकल कॉलेज में जाओ, सारे मेडिकल कॉलेज में एक ही चीज है, काम काम और काम, हमारा जो मेडिकल कॉलेज था, मेरी पूरा 50 की बैच में से मैं अकेला ही छूटा उसमें से, वो भी भक्ति की वजह से ये ज्ञान तो था ही नहीं मेरे पास, केवल भक्ति की वजह से, हमारा मेरा कमरा इधर, और मुझे तो पता ही नहीं था ये क्या कर रहे हैं ये लोग, बीएफ देख रहे, बीएफ व्हाट इज बीएफ, मुझे पता ही नहीं था बीएफ क्या होता है, ये ब्लू फिल्म ये है क्या, मुझे पता ही नहीं चला वो क्या है, उसी में सारे लगे रहते थे, वही उनका मार्ग था, वही, क्योंकि करेंगे क्या, वो जो उम्र थी 18-19 साल की, उसमें एक आकर्षण होता है, क्या है ये, हीरो हीरोइन को किस करते देख रहे तो वैसा ही करने की इच्छा होती है, और वो केवल बॉयज नहीं, गर्ल्स में भी वही, मुझे तो ये आश्चर्य था, बॉयज का तो ठीक है, फिर तो उधर देखता था तो उधर भी वही, इधर भी वही है क्या, हाँ मतलब वो तो दमन से कुछ नहीं होता है, पर ये तो अंदर की ट्रेनिंग की बात है, क्योंकि इसकी ऊपर कहीं चर्चा ही नहीं है, कोई कोई बोलता ही नहीं इसके बारे में, कोई सिखाता ही नहीं, कौन सिखाएगा, कोई बच्चे को कोई सिखाता, आजकल का बच्चा बैठ जाता है, माँ बाप बच्चे बैठ जाते हैं और टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, मूवी में सब दिखा रहे हैं, सब कुछ है उसमें, उसको पता नहीं रेप क्या होता है, ये क्या होता है, वो सब उसमें दिख रहा है, उसमें उत्सुकता तो होगी ना, ये क्या है, वो उसको माँ बाप बताते नहीं, कहाँ से पता चलता है, उसके दोस्तों से कहाँ से पता चलता है, वीडियो से और यहाँ वहां से। और ये विक्षिप्तता उत्पन्न हो यदि हो, ये समलैंगिकता, ये विक्षिप्तता है, इट्स अ परवर्टेड बिहेवियर, परवर्शन। और उसके बाद में कुछ सालों के बाद उनको फिर पश्चाताप होता है कि हमारा पूरा बचपन ऐसा चला गया, बाद में फिर रोते हैं, आंसू बहाते हैं।
इससे वैराग्य बना रहे तो आप क्या चिंतन करते हैं?
चिंतन रोज ब्रह्मचर्य के बारे में थोड़ा तो पढ़ना ही है, मुरली पढ़ना एक बात है, परंतु ब्रह्मचर्य के अपना हमारा जो ज्ञान है ना, इसके अलावा भी हमको थोड़ा कुछ चिंतन करना है। मतलब मैं तो कहूंगा वो जो किताब है सबसे बेस्ट बुक है ब्रह्मचर्य की, हाँ जगदीश भाई की, उसका भी ग्रुप में उसका स्टडी होना चाहिए, एक एक पैराग्राफ का थोड़ा थोड़ा उसका। अभी मुरलियां तो हम पढ़ ही रहे, अव्यक्त वाणियां पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये इस तरह की जो चर्चा हमने अभी जो कर रहे हैं ना, ये कहीं नहीं है। पुरुषार्थ के जितने क्लासेस है उसमें क्या चल रहा है, बाप समान बनना है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, ऐसा है, मैं वैसा हूँ, मैं समान की चर्चा है, सेवाओं की चर्चा है, निमित्त भाव की चर्चा है, ब्रह्मचर्य की चर्चा नहीं है, पवित्रता की चर्चा है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। पर ब्रह्मचर्य एक, हाँ मतलब कम है, अभी कम है, वैराग्य की बातें, ब्रह्मचर्य की बातें, आर पार जिसको चर्चा कहते हैं ना, एकदम पूरा कोई नहीं है, ही नहीं, चर्चा ही नहीं, अभी तो बस नाम मान शान, सम्मान, गाड़िया, मोबाइल, बस यही है, मेगा प्रोग्राम इन्होंने किया, वो सेंटर ने किया तो हम भी करेंगे, मतलब ये सेंटर सेंटरों के बीच में अंतर द्वंद ये सब चल रहा है, मकान बनाना है, ये बनाना है, सेंटरों पे वो चल, सेवाएं चल रही है, यहाँ कुछ और चल रहा है, यहाँ पर भी सारा डायलूशन है। मतलब बहनों को असुरक्षित लगे ऐसी हमारा मधुबन का वातावरण हो, ये हमको सोचना है कि ऐसा हो रहा है, तो बहुत ही डेंजर बात है। मुझे और भी एक बहन ने आके बताया कि मधुबन से जाती है तो दो तीन भाई ऐसे हैं कि जो घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं, अगर एक दिन नहीं गए तो पूछते हैं कल क्यों नहीं आए, अच्छा आप रोज यहाँ बैठते हो, आज यहाँ क्यों बैठ रहे हो, मतलब उनको क्या करना है, कौन कहाँ बैठ रहा है, ये पूछते हैं ना। जब दादी थी तब ये ऐसा था क्या, प्रकाश मेरी दादी थी तो ऐसा था, ऐसा था, ये क्यों हो गया, इसका कोई किसी भी किसी का ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं, वही चीज है, मतलब इसी इंटरेस्ट है, चर्चाएं चालू है मोबाइल की, चर्चाएं चालू है गाड़ियों की, कार की, किसके पास कार है किसके पास नहीं है, पर्सनल कमरा, ये सुख सुविधा, इसमें तपस्या लुप्त हो रही है। हम ये करने यहाँ आए थे क्या, यहाँ आए क्यों थे, ये सब चर्चा करने आए थे, यहाँ ये करना था तो वहां जाओ, वहां संसार में जाओ और करो सब कुछ, सब कर सकते हो, तो ये हमारा लक्ष्य ही नहीं है, हमारा लक्ष्य तपस्या, हमारा लक्ष्य है ब्रह्मचर्य, कैसे भी करके इसको ही हमको मास्टरी करनी है, इसको भूलना नहीं है बस। मतलब यहाँ तक बात में आए कि कोई दूसरा कह रहा है कि इनकी दृष्टिवृत्ति ऐसी हो रही है, मतलब उनको असुरक्षा का अनुभव हो रहा है यहाँ पर, ये कौन सी अवस्था आ गई हमारी। इसके लिए ब्रह्मचारी को कहते हैं कि नीचे देखकर ही चले, तुमको कोई लेना देना नहीं है, क्या है, कौन सी बहन है, क्या सेंटर की बहन है, क्या कर रही है, अभी से कितना दिन से यहाँ रह रही है, तुमको क्या करना है, 10 दिन से रह रही है, 15 दिन से रह रही है, रहने दो उसको, तुम्हारा क्या लेना देना है उसको, वो देखेगा एकोमोडेशन वाला, तुमको क्या करना है, वो इतना दिन से यहाँ क्या कर रही है, वो इतना दिन से यहाँ क्या कर रही है, अरे तुमको क्या करना है। डर लगता है कोई कोई को ज्यादा दिन यहाँ रखने का, मतलब उनको हेल्थ प्रॉब्लम है, मेरे पास आते हैं कि कहते हैं हमको रहना है, पर आप एक बार बात करो, चंद्रशेखर भाई से बात करो फोन करके, मैं बोला मैं उसमें जाता नहीं, वो आपकी बड़ी बहन को बोलो उनसे बात करने, बोलते मुझे तो ऐसा है अभी भी कमजोरी, अभी ये है, क्योंकि ज्यादा दिन रहते तो लोग पूछना चालू करते फिर, मतलब कि ये हमारा लक्ष्य क्या है और हम कर क्या रहे, क्यों देखना है किसी की तरफ, कौन कहाँ बैठता है हमको क्या लेना देना है, कौन कितना दिन रहता है हमको क्या लेना देना है, हम अपनी तपस्या में मगन रहे बस, अपना अपना डिपार्टमेंट, देखना ही नहीं है कुछ किधर क्या चल रहा है, ये सब करने नहीं आए थे। जैसे सूरज भाई क्लास में बता रहे थे ना, एक भाई आता है शांतिवन से, एक ही दिन पूरा मधुबन घूमता है ऊपर और सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और हमारे पास आके पूछता है, अरे मूर्ख तुमको ये भी नहीं पता यहाँ ये हो रहा है, तुम्हारे डिपार्टमेंट के अलावा तुमको कुछ पता ही नहीं, बड़े बुद्धू हो तुम तो, और ये बड़े अपने आप को होशियार समझते, सारी नॉलेज ले ली पूरा दिन भर, यहाँ ये हुआ, ये भाई को यहाँ से निकाल के वहां भेजा, इसको घर भेजा, इसकी यहाँ से वहां ट्रांसफर कर दी, यहाँ ये बहन के साथ ऐसा हुआ, वो बहन के साथ वैसा हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के बड़ा संतोष लगता है। हाँ हाँ हम बड़े ज्ञानी है, ये ज्ञान नहीं है, परचिंतन पतन का कारण नहीं है, परचिंतन पतन की जड़ है, बाबा ने कहा। चलो आज यहीं रोकते हैं, ओम शांति, एक मिनट का योग।